जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद भगवत गीता की जय गौर नेताई की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय बिजी थ्रू द बॉडी फ्री एज ए सोल हरी हरी बोल हरी हरी बोल शरीर से रहिए व्यस्त और आत्मा से रहिए हरे नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ जय श्री कृष्ण न शस्त्र पर न शास्त्र पर न धन पर न ही किसी युक्ति पर हे प्रभु मेरा जीवन तो आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर हरि हरि बोल एवरीवन हरि हरि बोल जय श्री राधे कृष्ण हर हर महादेव जय माता फ्रेंड्स फाइनली आज के सत्संग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और जो पॉडकास्ट पे हमें सुन रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करते हैं कि हम सबकी बुद्धि में भगवान विराजमान हो, अपनी विशेष कृपा हम सब पर बरसाएं ताकि हम सब उनकी वाणी को उनकी इंस्ट्रक्शंस को ठीक से समझ सके और अपने जीवन में अपना भी सके, है ना। तो फ्रेंड्स हम सब अपनी आध्यात्मिक यात्रा की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं और इस प्रक्रिया में सरल भगवत गीता का कोर्स भी आरंभ कर चुकी हैं। लास्ट वीक वेडनेसडे से स्टार्ट हुआ है हमारा सत्संग, है ना, जो कि एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है हमारी आध्यात्मिक यात्रा में। सबसे बड़ी बात है कि घर बैठे बैठे हमें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, हमारी ऐसी यात्रा हमारी आरंभ हो चुकी है ना। तो फ्रेंड जैसे कि एक गार्डनर होता है ना, माली जैसे होता है, तो वो गार्डन में सुंदर सुंदर फूल लगाने से पहले गार्डन की पूरी सफाई करता है अच्छे से, है ना, घास फूस को अच्छे से निकाल देता है उसको, फिर वो सुंदर सुंदर बीज लगा देता है ना। तो वैसे ही फ्रेंड्स अध्यात्म में आगे बढ़ने से पहले, भक्ति में आगे बढ़ने से पहले हमारे अंदर की सफाई होना बहुत जरूरी है ताकि हमें भगवत गीता के पूरे बेनिफिट्स मिले। भक्ति को लेकर जो हमारी गलत धारणाएं हैं ना, उनका निवारण होना बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। भक्ति को लेकर, स्पिरिचुअलिटी को लेकर हमारे अंदर बहुत सारे भ्रम हैं, गलत धारणाएं हैं जो कि हमें ठीक लगती थी, है ना, लेकिन जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि यार हमने क्या सोच बना के रखी थी और एक्चुअली ट्रुथ क्या है, है ना। तो इसलिए हमारी अंदर की सफाई के लिए हमें कुछ भक्ति को लेकर जो हमारी गलत धारणाएं हैं ना, उनके कुछ टॉपिक्स हमने लिए हैं, है ना। उसमें से दो टॉपिक हम कर चुके हैं। पहला टॉपिक कौन सा किया था हमने कि मेरे पास भक्ति के लिए समय नहीं है। अगर किसी को भक्ति के बारे में बताने की कोशिश करो ना कि यार थोड़ी भगवत गीता ही पढ़ लेनी चाहिए, सत्संग अटेंड कर लेना चाहिए, मंदिर चले जाना चाहिए, है ना, तो बहुत सारे आंसर्स मिलते हैं। तो सबसे मेन लोगों का मिथ है कि मेरे पास भक्ति के लिए समय नहीं है, आई डोंट हैव टाइम फॉर डिवोशन, है ना, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। फिर दूसरा मिथ था कि व्हाई टेक टू स्पिरिचुअलिटी इन यंग एज, क्या भक्ति बुढ़ापे के लिए, है ना, इसके बारे में भी हम बात कर चुके हैं। तो आज का हमारा कॉमन टॉपिक है, क्या भक्ति करने के लिए घर और परिवार छोड़ना पड़ता है, इज इट नेसेसरी टू लीव होम एंड फैमिली टू डू डिवोशन। क्या टॉपिक है हमारा कि क्या भक्ति करने के लिए हमें घर और परिवार छोड़ना पड़ता है, इज इट नेसेसरी टू लीव होम एंड फैमिली टू डू डिवोशन, है ना। तो इस पर हम आज बात करेंगे फ्रेंड्स, इस टॉपिक पे, कि क्या ये सच है या ये एक इल्यूजन है, भ्रम है। हम सब लोगों संसार में अलग अलग संस्थाएं हैं फ्रेंड, है ना, और उन संस्थाओं में अलग अलग कॉन्शियसनेस के लोग रहते हैं, है ना। तो अगर हम समाज में कुछ संस्थाओं की बात करें तो बिल्कुल सच है उन्हें कुछ लोगों ने घर छोड़े हैं, उसको हम मना नहीं कर सकते, है ना। हम अपने आसपास भी देखें तो हमें अपने आसपास भी ऐसे लोग मिल जाते हैं जिन्होंने भगवान के रास्ते पर चलने के लिए सच में घर बार छोड़ दिए, है ना। तो भगवत गीता की दृष्टि से हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली हम कौन से रास्ते को फॉलो कर रहे हैं, है ना, हम क्या करने वाले हैं भगवत गीता की दृष्टि से। जैसे कि आपको पता है कि गोलोक एक्सप्रेस एक संस्था है जो हम उनसे जुड़े हुए हैं, है ना, उसके बारे में बात करेंगे एक दिन, वो भी टॉपिक रहेगा हमारा। तो गोलोक एक्सप्रेस में हमारी विचारधारा क्या है और हम कैसे देखते हैं डिवोशन के इस रास्ते को, है ना, समाज में क्या हो रहा है इसके बारे में हमें कोई डिस्कस नहीं करना, इसके बारे में हमें नहीं जानना है कि समाज में सब कुछ हो रहा होता है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें उसके बारे में जानना चाहिए, है ना। हम भगवत गीता में पढ़ रहे हैं, जैसे 2020 में ये ग्रुप शुरू हुआ था स्पिरिचुअल लर्निंग, है ना, तो जो लोग जुड़े हैं 2020 से तो उनको तो मालूम है हम क्या कर रहे हैं, उन्होंने समय भी बनाया, जिनको लगता था कि हमारे पास समय नहीं है, और जिनको लगता था भक्ति तो बुढ़ापे में करनी चाहिए, है ना, जब हम डेथ बेड पे होंगे तो हमें भगवत गीता कोई सुना देगा, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं जब हम डेथ बेड पे होंगे तो कोई सुना देगा, उनको तो मालूम है कि क्या हमें भक्ति करने के लिए घर और परिवार छोड़ना पड़ता है। लेकिन जो हमारे साथ नए लोग जुड़े हैं, तो हम सबके मन में रहती है ये वाले भ्रम की, क्योंकि हम लोग अपने घर परिवार की जिम्मेदारी में इतने व्यस्त रहते हैं, कई बार तो ऐसा लगता है कि हम बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया है हम लोगों ने। अब जैसे हम लोग चले हैं इस रास्ते में, है ना, तो हमें क्या लगता है कि हमने बहुत टाइम वेस्ट किया है फालतू की इधर उधर की बातें करने में, इधर उधर के काम करने में, है ना, इम्पोर्टेंस नहीं देते ना हम एक्चुअली भगवान को, भक्ति को, स्पिरिचुअलिटी को। हमें क्या लगता है कि जो बस मैं कर रही हूँ बस वही ठीक कर, है ना, या जो मैंने अपने पेरेंट्स को देखा हुआ है करते हुए बस मुझे वही कर, अपने आसपास जो हमारे 10-15 लोग होते हैं एक्चुअली उनके लाइफ को हम फॉलो करते हैं। हम इस रास्ते में चलते हुए अपने अनुभव से हम आपको बताना चाहते हैं कि रियलिटी ये है फ्रेंड्स कि डिवोशन करने से रिश्तों में सुधार होता है ना। इसलिए कहते हैं ना फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, इसलिए गृहस्थी को गृहस्थ आश्रम भी बताया गया है ना, हमारे स्क्रिप्चर्स में गृहस्थी को गृहस्थ आश्रम बताया गया। आश्रम मतलब वो जगह जहाँ हम सब मिलजुल कर ईश्वर के रास्ते में एक दूसरे की हेल्प करते हुए, एक दूसरे को प्रेरणा देते हुए आगे बढ़ते हैं, है ना। गृहस्थ आश्रम मतलब वो गृहस्थी जिसमें पति पत्नी, पेरेंट्स, बच्चे मिलजुल कर भगवान के रास्ते में आगे बढ़े, इसलिए उसका नाम गृहस्थ आश्रम दिया गया है। लेकिन जो इग्नोरेंस में होगा, अज्ञान में होगा, तो भगवान जब कहते हैं ना भगवद गीता में, अपने काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ो, अपनी नेगेटिविटीज को छोड़ो, तो उसको क्या लगेगा कि शायद भगवान कह रहे हैं कि मैं घर बार छोड़ता, है ना। तो पहले तो हम समझेंगे कि क्यों डिवोशन करने से फैमिली लाइफ इंप्रूव होती है, और ये सत्संग गोलोक एक्सप्रेस का ये मॉडल एक्सपीरियंस बेस्ड मॉडल है फ्रेंड, खाली थ्योरी नहीं। जो लोग 2020 से जुड़े हुए हैं, है ना, वो एक्सपीरियंस अपना बता सकते हैं। ये सारी चीजें सिंसेरिटी से जो चीजें समझ रहे हैं, भगवत गीता को जो सिंसेरिटी से सुन रहे हैं, है ना, और सबसे बड़ी बात है इम्प्लीमेंट जो लोग कर रहे हैं, जो जो इंस्ट्रक्शन परमात्मा ने देनी है अब आगे भगवत गीता में, है ना, उन चीजों को जो भगवान हमें बता रहे हैं और जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने जीवन में, जो उतार रहे हैं, कोई भी, चाहे कोई एक श्लोक की किसी को समझ आ गया, पूरी भगवत गीता समझी है लेकिन मेरे को कुछ समझ नहीं आया, हम बोलते हैं कई बार, है ना। लेकिन हमने खाली पढ़ना ही नहीं है फ्रेंड, जैसे हम बैठते हैं ना मंदिर के आगे, बैठ गए सारी किताबें पढ़ ली, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, राम चालीसा, दुर्गा कवच, जैसे पढ़ते हैं हम, है ना, पढ़ लिया बस, समझ कुछ नहीं आ रहा है, उतारना तो दूर की बात है। लेकिन भगवत गीता में हमने ऐसे नहीं पढ़ना कि खाली पढ़ ली और बस चल पड़े आगे, कि कल को मैं बता सकती हूँ कि हाँ मैंने भगवत गीता पढ़ी हुई है, ऐसी स्टडी हमें नहीं करनी है फ्रेंड, है ना। भगवत गीता फ्रेंड्स हम पढ़ते नहीं है, हम अध्ययन करते हैं, एक एक वर्ड को हम समझने की कोशिश करते हैं भगवत गीता में, कि एक्चुअली भगवान हमें क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हम उसको कंपेयर करते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और भगवान हमें क्या समझा रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स, ये एक्सपीरियंस बेस्ड मॉडल है हमारा, है ना, खाली थ्योरी नहीं है ये। जो ये सारी चीजें जो फॉलो कर रहे हैं ना 2020 से, वो सब सिंसेरिटी से जो चीजें समझ रहे हैं और जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो इन सब चीजों, ये सब मेरी बातें नहीं है ना। जो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये सब उनकी बातें हो रही हैं, वो सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि उनके रिलेशनशिप्स बेटर हुए हैं। जब आप रिव्यूज देंगे फ्रेंड्स जो 2020 से या 2021 से जुड़े हुए हैं, तो आप बता सकते हो कि क्या आपके रिलेशनशिप बेटर हुए हैं, क्या आपको घर बार छोड़ने की जरूरत पड़ी है, क्या आपने घर बार छोड़ दी है 2020 से, हमने भगवत गीता पढ़ने शुरू किए तो क्या आपने घर बार छोड़ दी है, है ना। अब देखो अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से भगवत गीता सुनने के बाद अपनी ड्यूटी जो युद्ध करने की थी ना उसकी, उसको अच्छे से निभाया, उल्टा उन्होंने तो अपनी ड्यूटी छोड़ दी कि नहीं मुझे तो युद्ध ही नहीं लड़ना, मुझे कुछ नहीं करना चाहिए, लोग मुझे मार ही क्यों ना दे, है ना, इस सिचुएशन में थे अर्जुन। लेकिन भगवान की बातें सुनने के बाद, भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने अपनी ड्यूटी को बेस्ट वे में किया, और जीत किसकी हुई, जहां पे भगवान होंगे जीत तो ऑब्वियसली वहीं पे होगी। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको, कि प्रहलाद जी महाराज को बचाने के लिए नरसिंह भगवान ने खंबे से दर्शन दिए, तो प्रहलाद जी महाराज को भगवान ने क्या उनको घर बार छोड़कर जंगलों में जाने की सलाह दी, है ना, नहीं, उन्होंने प्रहलाद जी महाराज को कहा कि अब आप अच्छे से राज्य को और अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाओ, है ना, अच्छे से और साथ साथ में मुझे स्मरण करते हुए चलो। फिर ध्रुव महाराज जी का एग्जाम्पल लेते हैं, जब ध्रुव महाराज ने जब तपस्या करके भगवान को खुश कर दिया, तब भगवान ने दर्शन दिए और उन्होंने कहा कि आप अपने पेरेंट्स के पास जाइए और आप अपने पिता के बाद कई हजारों साल तक इस पूरी पृथ्वी का राज्य करो धर्म परायण तरीके से, मुझे याद करते हुए करो। क्योंकि ध्रुव महाराज जी ने घर छोड़ के तपस्या करने चले गए थे भगवान की, है ना, तो जब भगवान उनकी तपस्या से खुश हो गए तो उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दी है, थोड़ी बोला कि हाँ हाँ तुम मेरी भक्ति करते रहो। भगवान ने क्या इंस्ट्रक्शन दी ध्रुव जी महाराज को कि तुम अपने पिता के पास जाओ और तुम उन अपने पिता के बाद कई हजारों साल तक इस पूरी पृथ्वी का राज्य का भोग करोगे, ब्लेसिंग्स दी उसको, लेकिन करना कैसे है इसको, धर्म परायण तरीके से, इन वर्ड्स को ध्यान सुना करो, धर्म के रास्ते पर चलते हुए मुझे याद करते हुए अपने राज्य का भोग कर। और फिर लास्ट में भगवान ने कहा कि तुम मेरे पास ही वापस आओगे। तो इस तरह अगर हम भगवान की ये जो बातें हैं, उनकी जो स्टोरीज हैं, कथा कहानी है, उनको अच्छी तरह से समझते जाए ना, हर कहानी में फ्रेंड्स हम देखेंगे ना कि अगर हम कोई भी कहानी भगवान की रामायण से, महाभारत से, या कोई भी अच्छी स्टोरीज हम पढ़ते हैं तो उससे अगर हम समझें, कोई ना कोई सीख हमें मिलती। अब देखो विदुर जी महाराज मंत्री थे, है ना, महाभारत में, मतलब राज्य के होम मिनिस्टर, उनकी फैमिली थी, है ना, और वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और वो अपनी सारी ड्यूटीज को अच्छी तरह से निभाते हुए भक्ति करते थे। मतलब वो घर पे रहते थे, भक्ति भी करते थे और होम मिनिस्ट्री का काम भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते थे। तो ये सब करते हुए भी तो भक्ति करते थे ना विदुर जी। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है फ्रेंड कि भगवान के बहुत सारे पहुंचे पहुंचे भक्त भगवान के गृहस्थी में रहते हुए अपनी जिम्मेदारी को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए भी भक्ति करते थे। और लेकिन हमारा मन क्या देखता है, वो ये एक दो उदाहरण, किसी ने घर छोड़ दिया फिर यही मन सोचता रहता है कि अगर कोई कर चल भी रहा है भक्ति के रास्ते में तो मन में क्या आता रहेगा, यार ये जो भक्ति के रास्ते में चल रही है, ये चल रहा है, कहीं ये घर बार ना छोड़ दे, है ना। लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना है फ्रेंड कि जब भगवान अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दे रहे थे तो वो क्या समझा रहे थे, है ना, कि अपनी लड़ाई लड़ो, मैं चाहता हूँ, है ना, कि तुम अपना कर्म करो सही ढंग से, लेकिन मुझे याद करते हुए करो, है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाओ, लेकिन कैसे करो, मुझे याद करते हुए करो, मुझे सारथी बनाया है, मुझे सरेंडर किया है तो मेरी बात सुनो, है ना। तो भगवान हमारा घर बार कभी नहीं छुड़ाते फ्रेंड्स। प्रभु कहते हैं आप अपने अंदर की नेगेटिविटीज को छोड़ो। ये जब भी कौरव पांडव की बात होगी ना फ्रेंड्स, तो ये कौरव पांडव हमारे अंदर ही, राम और रावण हमारे अंदर ही है ना, हमेशा लड़ाई चलती रहती है ना, रस्सा कशी की गेम चलती रहती है, एक पक्ष कहता है कि नहीं नहीं मुझे ये करना चाहिए और एक पक्ष कहता है नहीं नहीं छोड़ो ना, क्या फर्क पड़ता है ना। तो बस उस रस्सा कशी में हमने डिसाइड करना है कि हमें कौरवों का साथ देना है फ्रेंड्स कि हमें पांडवों का साथ देना है ना। ये सारी लड़ाई हमारे अंदर की, हमारे मन की लड़ाई, रस्सा कशी की गेम, ये जो अंतर्द्वंद है ना, ये हमारे अंदर ही चल रहा है, कहीं और थोड़ी चल रहा है, दुश्मन कोई हमारे बाहर थोड़ी, हमारे अंदर ही हमारे दुश्मन है। आपने देखा होगा कई लोग बहुत सिस्टमेटिकली अपना घर चलाएंगे और फालतू के लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ते, है ना, बहुत अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, और कई लोगों को छोटी छोटी बातें भी पहाड़ जैसी बड़ी लगती, और कई लोगों की लाइफ में इतनी बड़े बड़े इंसिडेंट हो जाते हैं कि दूसरे व्यक्ति को पता ही नहीं चलता कि इसकी लाइफ में क्या क्या हुआ होगा, पता भी नहीं लगने देता। और एक व्यक्ति ऐसा होता है, छोटी सी प्रॉब्लम भी आ जाती है लाइफ, या मान लो किसी ने कुछ कह ही दिया तो उसको लगता है कि मेरी तो लाइफ ही बहुत दुखी है, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि वो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है ना, उसको लगता है जैसे मेरी लाइफ कंफर्टेबल चल रही है, बस मेरी ऐसे ही लाइफ चलती रही, लाइफ में कोई भी दुख नहीं आएगा या लाइफ में कोई भी बात नहीं होगी, एक जैसी लाइफ थोड़ी कॉन्स्टेंट चलती रहती है ना। और हमें डील करने नहीं आता है उन चीजों को, अपने दुखों से डील करने नहीं आता, अपने सुखों से डील करने नहीं आता, सुख में इतने ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, है ना, इतने ज्यादा अभिमानी हो जाएंगे, ना अपने आसपास के लोगों को पूछेंगे और ना परमात्मा को पूछेंगे, और दुख में इतने ज्यादा दुखी हो जाएंगे कि लगेगा कि बस सारा दुख तो मेरे पास ही आया है, भगवान मुझे ही दुख क्यों देते हैं, भगवान सिर्फ मेरी नहीं सुनते हैं, बाकी तो सबकी सुनते हैं, तब तो फिर उनको ऐसा लगता है ना। तो हमें डील करने नहीं आता, अपने इमोशंस को डील करने नहीं आता। तो भगवद गीता फ्रेंड्स हमें अपने इमोशंस से डील करना सिखाती है ना, सुख और दुख में संभाव होना सिखाती है। जितना भी सुख आ जाएगा ना, फिर हमें इतना सुख लगेगा नहीं, और दुख भी इतना ज्यादा आ जाएगा कि वो दुख भी इतना लगेगा जैसे सुख नहीं रहा वैसे दुख भी नहीं रहेगा, है ना। तो मतलब माइंडसेट ही बदल जाता है, सिंपल बात है, भगवद गीता से जैसे अर्जुन का बदला वैसे हमारा बदल जाएगा फ्रेंड, है ना। लेकिन उसके लिए करना क्या है, सिंसियरिटी से भगवान की बातें सुननी है, भगवान की वाणी पे कोई प्रश्न नहीं करना कि हाँ पता नहीं भगवान ने बोली है या नहीं, भगवद गीता की क्या इंपॉर्टेंस, अरे भगवद गीता की इंपॉर्टेंस इंडिया तो छोड़ो, ऑल ओवर वर्ल्ड में इस टाइम भगवद गीता की इंपॉर्टेंस है, है ना। और कितने ही लैंग्वेजेस में भगवद गीता का प्रचार प्रसार हो रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड, हम लोगों को अपनी स्क्रिप्चर से कोई लेना देना नहीं होता, हम लोगों को फालतू पॉलिटिक्स में पढ़ना है ना, घर की पॉलिटिक्स में और बाहर की पॉलिटिक्स में हमें घुसना है बस। भगवान हमें बता रहे हैं कि चलो थोड़ा सा पढ़ी लो यार, मैं समझ तो लेती हूँ उसमें बोला क्या गया, भगवान कहते क्या है भगवद गीता में। एक यही एक बात हमारे अंदर हो ना, है ना, कि एक्चुअली भगवद गीता में भगवान बता कह रहे हैं, है ना, ये भी एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए भगवान को जानने की, अपने आप को जानने की। भगवान फिर पता क्या लगता है, भगवद गीता पढ़ने बाद अगर समझ आ जाती है तो, है ना, तो लगता है यार हम क्या कर रहे थे और भगवद गीता में देखो भगवान क्या बोल रहे हैं, पूरा मतलब माइंड सेट ही बदल जाएगा आपका, है ना। तो भगवान हमसे घर बार कभी नहीं छुड़ाते, प्रभु कहते हैं अपने अंदर की नेगेटिविटीज को छोड़, भगवान को स्मरण करते हो, अपने काम करो भगवान की स्मरण में, खुशी आए तब भी भगवान को याद करना है, दुख आए तब भी भगवान को याद करना, खुद भी खुश रहो और दूसरों को भी खुशियां बांटो। और हम करते क्या है, खुद भी दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुखी बांटते हैं, सिंपल बात है, जो हमारे अंदर है ना वही हम दूसरों को देते हैं। अगर हम पॉजिटिव हैं तो हमसे जो भी बात करेगा ना वो पॉजिटिव ही हो जाएगा, है ना। अगर हम खुद दुखी हैं, नेगेटिविटी से भरे पड़े हैं, तो दूसरों को क्या देंगे, हम दूसरों को हमें दुख ही सुना रहे होंगे, अब ये हो गया, अब वो हो गया, अब ये हो, है ना। इसके अलावा हम करते क्या है पहले बताओ, कुछ करते हैं हम किसी के लिए, अपने लिए नहीं कुछ कर पाते, अपनी लाइफ को हैंडल करने नहीं आता, अपने इमोशंस को हैंडल करने नहीं आता, हम दूसरों की लाइफ को कैसे मैनेज कर पाएंगे, अपने बच्चों की लाइफ को कैसे खुश कर पाएंगे, बाकी दूसरे तो छोड़ो अपने। अब जैसे हम हाउस वाइफ्स हैं तो हमें अपने बच्चों को देखना है, अपनी फैमिली को देखना है, अपने पेरेंट्स को, सब कुछ, अपने भाई बहन होते हैं, सब रिलेशंस होते हैं, जब हम खुद ही अपने इमोशंस को हैंडल कर पाए, कैसे गुस्से को कंट्रोल करना है ना, कैसे कंपैरिजन को कैसे कंट्रोल करना है, कंपैरिजन में नहीं पड़ना चाहिए हमें, या ईर्ष्या को कैसे कंट्रोल में करना है, जो भी हमारे नेगेटिव क्वालिटीज, हमें इसको डील ही नहीं करना आएगा फ्रेंड, तो हमारे रिलेशंस कैसे बेटर होंगे आप ये बताओ। और ये बातें हमें कोई सिखाएगा कौन, आपने कभी सोचा ये सारी बातें हमें सिखाएगा कौन, क्या हमें स्कूल में ये बातें सिखाई गई हैं, क्या हमें कॉलेज में ये बातें सिखाई गई, कभी भी एक घंटा भी हमने क्या ये डिस्कस किया है किसी के साथ, यार कैसे मैं कंट्रोल करूं, हम निंदा चुगली में तो फुल पड़े रहेंगे, यार मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, इसकी बातें उसकी बात, कोई ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन हम निंदा चुगली नहीं करते। सोचो ना पूरा दिन मैं क्या करती हूँ या क्या करता हूँ, सोचो क्या करता हूँ क्या करती हूँ, क्या मैं सही से पूरा दिन बिताती कि मैं परमात्मा को वो वाला दिन डेडिकेट कर सकूं कि परमात्मा मैंने आपकी याद में ये दिन बताया, आपकी याद में मींस कि उस दिन को मैंने बेस्ट वे में जिया, परमात्मा के साथ आंखें मिला के मैं बोल सकूं रात को कि परमात्मा मैंने आज आपकी याद में दिन बिताया, जो आपने कहा है वो बात पूरी माननी है मैंने, जो आप मुझे बोलते हो मैंने उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी लाइफ जी है, मैंने किसी के बारे में गलत सोचा ना बोला, बोला तो दूर की बात है, अंदर से थॉट भी नहीं आया मेरे को कि मैं किसी का कुछ गलत कर सकूं या गलत सोच सकूं। परमात्मा हमें क्या कहते हैं, सिंपल परमात्मा कहते हैं जैसे मैंने अपनी लाइफ जी है सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी करुणा, एक प्यार, एक संभावना होनी चाहिए, सिर्फ अपने लिए जीवन तो सब सारी दुनिया जीती है, एनिमल्स भी अपने लिए जीते हैं, हमारी स्पीशीज जो मनुष्य जीवन मिला है वो भाग्य से मिलता है फ्रेंड, है ना। और सिर्फ एक मनुष्य ही है जो सोच सकता है, एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के बारे में सोच सकता है, अच्छा करने के बारे में सोच सकता है, जानवरों से ऊपर की स्पीशीज है ना हमारी, कि हमें भी वही करना है जैसे एक जानवर अपनी जीवन जीता है, सिर्फ अपना और अपना अपने बच्चों का देखता है, या तो हम अपने बच्चों का भी छोड़ रहे हैं, अब तो अपना सोचते हैं पहले अपना, फिर कभी बच्चों का अगर कुछ याद आ जाए तो, और दूसरे का तो हम कभी सोच ही नहीं सकते, क्योंकि सोच ही नहीं है वैसी, क्योंकि सिखाया ही नहीं है हमें किसी, क्योंकि भगवद गीता नहीं पढ़ी है, अपने अच्छे स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़े हैं, है ना। तो हमें मौका मिला है फ्रेंड, भगवद गीता हमें बिल्कुल बढ़ चढ़ कर हमें पढ़नी है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो भगवद गीता पढ़ने से क्या होगा, ये सारे जो मिथ होंगे ये जब हमारे अंदर से निकल जाएंगे, अंदर हमारा अंतरात्मा जब पूरी साफ हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी, है ना, तो फिर होगा क्या, हम खुद भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी हम खुशियां बांटेंगे फ्रेंड्स, है ना। फिर घर बार भी किसने दिया है हमें, ये सोच आ जाता, ये सोचा भी हमने कभी, ये घर बार है, ये फैमिली है, ये किसने दिया है हम। अब देखो आरती तो हम सब करते होंगे, है ना, आरती में जब हम बोलते हैं ना कि तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, ओम जय जगदीश हरे। तो फ्रेंड ये सिर्फ गानी नहीं है, इस भाव को ग्रहण करना कि परमात्मा ने दिया ना ये सब कुछ, उनको ही अर्पण कर रही हूँ ना मैं, है ना। ये तन मन धन किसका है, ये सांसें किसके, ये बच्चे किसके, ये सारे सुख सुविधाएं किसकी हैं, किसने दी है मुझे? परमात्मा ने दी है। और हमें क्या लगता है कि उनके लिए हमारे पास समय नहीं है, है ना? भक्ति के लिए हमारे पास एक स्पेशल हमारे पास घिसी पिटी लाइन है कि नहीं नहीं भक्ति तो बुढ़ापे के लिए है, भक्ति के लिए मेरे पास समय नहीं है। या भक्ति ज्यादा कर ली तो हमारे बड़े बुजुर्ग ही बोलने लग जाते हैं, यार तुमने क्या घर छोड़ना है क्या, है ना? अपने रिलेटिव से ही टोंट पड़ने शुरू हो जाते हैं कि अब ये घर बार छोड़ देगी या देगा। तो मुझे करना क्या है फ्रेंड, मुझे प्रभु को समर्पित करते हुए अपना जीवन जीना, ईश्वर अर्पण कर्म प्रसाद बुद्धि। हर एक ड्यूटी जो भी भगवान ने हमें ड्यूटी दी है एज ए हाउस वाइफ, जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे को हाउस वाइफ का रोल प्ले करने को मिला है ना, मदर का रोल मुझे प्ले करना है, फादर का रोल किसी को मिला है, एक डॉक्टर का रोल कोई प्ले कर रहा है, एक टीचर का रोल कोई प्ले कर रहा है, ये सब भक्ति है फ्रेंड। जब तक हम फ्रेंड्स अध्यात्म को भक्ति को सिर्फ पूजा पाठ मानकर ही चलेंगे ना, तब तक आपको ये लगेगा कि भक्ति करना मतलब तपस्या करना मतलब जंगलों में चले जाना, घर बार छोड़ दो, वहीं शांति मिल सकती है ना। ज्यादातर आपने लोगों को सुना होगा ना, मैंने आपको पहले भी बताया था ये बात कि जब लोग धाम यात्रा करने जाते हैं 3-4 दिन तो क्या बोलते हैं, यार बहुत शांति मिली वहां पे, बहुत शांति मिली, अरे घर में तो फिर से वही रूटीन है। मैं आपको 100% श्योरिटी देती हूँ कि अगर आपने 1 साल अच्छे से कोर्स कर लिया ना, 1.5 साल का कोर्स चलने वाला है हमारा ये भगवद गीता का, है ना, तो आपने अच्छी तरह से अगर कोर्स कर लिया ना तो ये बात आप भूल जाओ कि मेरे को धाम यात्रा मेरे को शांति मिलेगी और घर में मेरे को अशांति, ऐसे कैसे हो सकता है? अगर शांति है तो आपको घर में भी शांति है ना, अगर अशांति है तो धाम यात्रा में कैसे शांति मिल जाएगी? वहां पे भी तो आप घर की बातें और बाहर की बातें सोचते रहोगे। चलो एक दो दिन आपको शांति मिल भी गई लेकिन आना तो वापस घर ही है ना, तो आपको घर में ही धाम यात्रा वाला आनंद महसूस होगा फ्रेंड, वही शांति आप घर में भी महसूस करना शुरू कर दोगे जो आप धाम यात्रा में महसूस करते थे। ये आपको मैं 100% श्योरिटी के साथ बोल रही हूँ। लेकिन उसके लिए करना क्या है, नित्य निरंतर फ्रेंड्स हमें चलना है और भगवान की बातों पे भगवत गीता पे हमें विश्वास रखना है। देखो महाभारत में अर्जुन की सिचुएशन देखो तो क्या युद्ध भूमि में शांति है या अशांति है? बाहर से देखो युद्ध भूमि में कितनी अशांति होगी, सब जगह मार काट चल रही है ना, और अर्जुन क्या उस सिचुएशन में क्या तिलक लगाकर पूजा करने बैठ गया? वो भगवत गीता का ज्ञान ले रहा है फ्रेंड्स, समझ रहा है कि भगवान उसको समझा रहे हैं कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए, भाई जो तुम्हें इंस्ट्रक्शंस वो दे रहे हैं अपनी की भी तुम्हें करना क्या है, वो भगवत गीता से भगवान का ज्ञान ले रहा है फ्रेंड्स, अज्ञान से ज्ञान की तरफ जा रहा है। हमारा भी यही हाल है, हम अज्ञान में जीवन जीते हैं, पूरी लाइफ बीत जाती है और हम अज्ञान में जी रहे होते हैं, है ना, तो भगवत गीता हमारे अंदर ज्ञान का दीपक जला देती है, है ना, तो भगवत गीता हमारे अंदर ज्ञान का दीपक जला देती है, हमें समझा देती है एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं और हमें करना क्या है, हमें हाथ पकड़ के अंधेरे से रोशनी की तरफ ले जाती है। आप भगवान को एक्सपीरियंस कर पाओगे, आप उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको सुनना है, मन लगा के आपको सुनना है, ध्यान लगा के आपको सुनना है, है ना। तो भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता का ज्ञान दिया और ये समझाया कि तुम्हें युद्ध करना चाहिए, यही धर्म, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, है ना, जो सही है तुम्हें वही करना चाहिए, चाहे तुम्हें कंफर्टेबल लगे या ना। कई बार होता है ना हम भी दो राह में फंस जाते हैं, एक तरफ सही राह है एक तरफ गलत राह है, तो हमें क्या लगता है गलत राह कंफर्टेबल लग रही होती है, यार चलो यार ठीक है ना, किसी को क्या पता चलेगा, किसी को क्या पता चलेगा मैं क्या कर रही हूँ, है ना। लेकिन भगवान हमें बता रहे इतने नहीं, ये मत करो ये कर, बोलते हैं ना अंदर से इंस्ट्रक्शन आ रही होती है, तो भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को कि तुम्हें कंफर्टेबल लगे या ना लगे तुम्हें वही करना चाहिए जो धर्म कह रहा है। अब रामायण की बात करते हैं, रामायण में जब भगवान श्री राम ने युद्ध जीत लिया और विभीषण को उन्होंने सारा राज्य दे दिया, तो विभीषण को श्री राम जी ने कहा अब तुम धर्म परायण तरीके से लंका नगरी के पूरे राज्य का भोग करो। लेकिन वर्ड क्या बोला, धर्म परायण तरीके से, जो धर्म कहता है उसके अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ जियो, है ना। तो भगवान ने क्या कहा विभीषण को कि तुम लीडर बनो बट सच्चाई के लीडर, झूठ के लीडर नहीं बोलते भगवान, बनो सच्चाई के लीडर, बनो और सच्चाई के रास्ते पे चलो, मेरी ड्यूटी समझकर मुझे स्मरण करते हुए राज्य का भोग करो, है ना। भगवान देखो बार बार कह रहे हैं मुझे स्मरण करते हुए अपने ड्यूटीज करो। अब हम बात कर रहे हैं विभीषण की बात की या हम अर्जुन की बात करें तो उसको हम अपनी लाइफ से कनेक्ट करके समझेंगे ना। अब भगवान हमें कह रहे हैं कि भाई अपनी ड्यूटी को करो लेकिन मुझे स्मरण करते हुए अपने ऐश आराम का भोग करो। देखो इसमें कितनी डीप बात है, मुझे स्मरण करते हुए भगवान कह रहे हैं ना, मुझे स्मरण करते हुए मतलब मैं अगर अपना मन घड़न जीवन जीऊं, है ना, मैंने सुबह पूजा पाठ कर ली, मान लो फॉर एग्जांपल मैंने सुबह पूजा पाठ की लेकिन उसके बाद मैं फिर से मन घड़न जीवन जी रही हूँ, दूसरों के बारे में गलत सोचना, निंदा चुगली करना, है ना, बैड वर्ड्स दूसरों को यूज करना, अंदर से भी गलत सोचना, बाहर से भी गलत बोलना, ईर्ष्या करना, निंदा चुगली करना, कंपैरिजन करते रहना, है ना, अपने काम को ठीक ढंग से नहीं करना, अपने ड्यूटी जो भगवान ने मुझे दी है उनको नहीं करना, अगर मैं ये करूंगी तो क्या मैं भगवान को स्मरण कर पाऊंगी? मैं तभी स्मरण में रख सकती हूँ भगवान को जब मैं अपनी लाइफ को, हर दिन को, हर एक घंटे को बेस्ट जीवन में उसको जीऊं, है ना। उसके लिए मैंने आपको कहा था कि रोज रात को आपने सोने से पहले 5 मिनट बैठना है ना, चौंकड़ी मार ली जैसे, मान लो हाथ आगे किए, बैक स्ट्रेट रखनी है, दोनों हाथ ऐसे रख देने आगे फैला के जैसे ध्यान में बैठते हैं ना, आंखें बंद करो 5 मिनट और सोचो मैंने आज पूरा दिन क्या, पूरा दिन को सुबह से लेकर रात तक की अपनी एक्टिविटीज सोचो कि मैंने क्या क्या किया आज पूरा दिन। फिर देखो उसमें सोचो मेरी क्या क्या गलतियां थी, मैं किसको क्या क्या हर्ट किया, अपने आप को कहाँ कहाँ हर्ट किया, अपने आसपास के लोगों को क्या क्या हर्ट किया, सोचो कि मैं कल अपना बेस्ट दूंगी। पहले आपने रोज रात को सोचना, ये 5 मिनट आपने निकालने है ना, फिर दिन में इसको 2 बार कर देना, 3 बार कर दो, फिर अपने आप ही आपको अपने आप पे चेक रहेगा कि आज मैं कैसा सोच रही हूँ, कैसा मैं जीवन जिया, मैंने दूसरों के लिए क्या सोचा या अपने बारे में क्या गलत सोच रही हूँ, है ना। परमात्मा से स्ट्रेंथ मांगो कि मैं एक बढ़िया जीवन जीना चाहती हूँ, अच्छा जीवन जीना चाहती हूँ, आपने मुझे जो दुख है मेरे या जो आपको लगती है जो दुख तकलीफ है, आपने मुझे हाथ पकड़ के इस दुखों से निकालना है ना। ये हो ही नहीं सकता कि आप सिंसियरिटी से भगवान से प्रार्थना करो और भगवान आपका हाथ ना पकड़े। फ्रेंड्स, कमी ना हमारे इनिशिएटिव में होती, क्योंकि हमारा ध्यान ही नहीं होता है, हमारा ध्यान तो फंसा पड़ा है लोगों में, दूसरों की बातों में, फालतू चीजों में फंसे पड़े हैं, पता है नहीं है कल की लाइफ होनी है या नहीं, और आज को हम वेस्ट करी जा रहे हैं। वेस्ट हम क्या सोचते हैं, कल को लाइफ जियेंगे, कल लाइफ जियेंगे, कल कुछ ऐसा होने वाला है कि मेरी लाइफ बिल्कुल बदल जाएगी ना। तो स्मरण करने का बहुत ही एक महत्व है कि तभी हम स्मरण कर पाएंगे जब हम भगवान के इंस्ट्रक्शन के अनुसार जीवन जियेंगे। और वानरों की सेना जिनकी मदद से भगवान राम ने युद्ध जीता था, तो उनको भी और सुग्रीव को भी प्रभु की गाइडेंस थी, क्योंकि सुग्रीव कह रहा था कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। जब युद्ध समाप्त हो गया, युद्ध जीत गए भगवान श्री राम, तो सुग्रीव ने क्या कहा कि मैं भी आपके साथ जाऊंगा, और वानर सेना भी यही कह रही थी। लेकिन भगवान ने वानरों की सेना को कहा कि तुम सब सुग्रीव के साथ रहोगे, उनकी हेल्प करोगे राज्य चलाने में, है ना। तो प्रभु ने क्या कहा, सुग्रीव को क्या इंस्ट्रक्शंस दी कि तुम्हारा राज्य चलाना ही मेरी हेल्प है, तुम राज्य अच्छे से चलाओ धर्म प्रायण तरीके से, वही मेरी सेवा। फ्रेंड देखो, अगर एक वकील गलत तो क्या सारे वकील गलत है, सारी वकालत गलत है, और अगर एक डॉक्टर गलत है तो क्या सारी मेडिकल प्रैक्टिसेस घूसखोर है, है ना। तो फ्रेंड्स, अगर समाज में कुछ लोगों ने घर बार छोड़ भी दिए हैं, तो फिर हम क्या सोचते हैं कि अध्यात्म में शायद ऐसा ही होता है, भक्ति में शायद ऐसा ही होता है ना, इसलिए क्या कहते हैं लोग, थोड़ी थोड़ी भक्ति करनी चाहिए, बस थोड़ी थोड़ी पूजा पाठ करो, बस हो गया, और फिर अपना मन गणन जीवन जियो, है ना, बस थोड़ी सी भक्ति कर लो, सुबह शाम आरती कर लो, जोत जगा लो, बाकी पूरा टाइम अपनी मन गणन जीवन जियो। कितने सारे उदाहरणों से फ्रेंड्स हम देख रहे हैं, भगवान ने कहा अपनी ड्यूटीज करो, है ना, मुझे स्मरण में रखो, तो हमें भगवान की बातें सुननी है फ्रेंड्स। लेकिन आपको ये भी लग सकता है कि ये तो सारी पुरानी बातें हैं, है ना, जो सारे पुराने एग्जांपल्स हैं, तो फिर हम आज की बात करते हैं। आज भी देखो बहुत सारे डिवोटीज हैं, आज भी बहुत सारे भक्त हैं भगवान, हमारे पीएम को ले लो, है ना, वो भगवान श्री कृष्णा के, भगवद गीता के फॉलोअर, तो क्या उन्होंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ छोड़ दी, अपनी फैमिली लाइफ छोड़ दी भक्ति के लिए, है ना। तो वो भक्ति के लिए वो अपने सबसे बिजिएस्ट टाइम में भी भक्ति करते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है फ्रेंड्स। तुलसी कवाड़ की बात करते हैं, भगवद गीता की बहुत अच्छी फॉलोअर है ये, इंडियन सेकंड जनरेशन इंडियन, अमेरिका की कांग्रेस वुमन है, भगवद गीता की स्ट्रॉन्ग प्रचारक है फ्रेंड्स, वो फैमिली लाइफ कैरियर सब जगह एक्सीलेंट परफॉर्मेंस है उनकी, और वो आगे बढ़ रही है भगवान के रास्ते में, भगवद गीता की इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग। बहुत सारे एग्जांपल्स है फ्रेंड्स हमारे पास, है ना, आप भी देखते होंगे अपने आसपास। तो पहले हम समझेंगे फ्रेंड्स कि रिलेशनशिप जो है वो हमारे खराब होते क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स हमारा अहंकार बहुत ज्यादा होता है, हम लोगों की छोटी छोटी बातें माफ नहीं कर पाते, पकड़ कर बैठ जाते हैं, 10-10 सालों से 20-20 सालों से बातें पकड़ी हुई, हमारी बात करने के तरीके में हार्शनेस होती है, हम अपनी बात सबको सुनाना चाहते हैं लेकिन दूसरों की बात सुनना नहीं चाहते, अपनी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं दूसरों को, लेकिन दूसरे की कुछ भी दुख तकलीफ से हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें अपने आप से मतलब होता है, लिसनिंग पावर नहीं होती, हम ह्यूमिलिटी नहीं होती। ये सारी क्वालिटीज फ्रेंड्स आएंगी कैसे हमारे, ह्यूमिलिटी, फॉरगिवनेस, कंपैशन, लव, सिर्फ और सिर्फ ये सारी क्वालिटीज जो डिवाइन क्वालिटीज होती है ना फ्रेंड्स हमारे अंदर, ये सारी हमारी प्रभु के साथ जुड़ने से, स्पिरिचुअलिटी में आने से, भक्ति में आगे बढ़ने से ये क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप होती है फ्रेंड्स, और कोई रास्ता नहीं है फ्रेंड्स, है ना। या तो हम अपने स्क्रिप्चर्स पढ़ें, भगवान के इंस्ट्रक्शन सुने, स्पिरिचुअलिटी का, अध्यात्म का जीवन जिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं होती ये क्वालिटीज हैं, और हमें ये इसके अकॉर्डिंग ही लाइफ जीनी चाहिए। हमें कोई नॉलेज नहीं है इस बारे में, और ना इसके बारे में किसी ने कभी कुछ बताया, ना स्कूल में, ना घर में। देखो, कोई और जगह से हमें ये डिवाइन क्वालिटीज नहीं मिल सकती फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म में ही ये डिवाइन क्वालिटीज हमारे अंदर डेवलप होती है। देखो, घर में अगर हम न्यूज सुनते हैं, क्या सीख लिया हमसे आज तक? मर्डर रेप की खबरें सुन रहे हैं, एक ही न्यूज बार बार रिपीट हो रही। अगर हम ये न्यूज सुन रहे हैं फालतू की, तो बच्चों के साथ क्या हम कंफर्टेबल होते हैं, या हम आरती करते हुए, भोग लगाते हुए कंफर्टेबल रहेंगे बच्चों के साथ? बच्चों को भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं, बच्चों को बोल सकते हैं हम भोग लगाने के लिए दिन में कोई एक टाइम डिसाइड कर लो, सुबह या शाम का, जिस वक्त हम सब मिलकर आरती करेंगे, बच्चों को भोग लगाने के लिए प्रेरित करो, है ना, बच्चों को चैंटिंग करने के लिए प्रेरित करो, बच्चों को रोज हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए प्रेरित करो, है ना। तो सोच कर देखो, लोग ये सब फालतू की न्यूज, निंदा चुगली, सिगरेट पीना, ड्रिंक करना, सब एक व्यक्ति घर पे करता है, सब कुछ घर में कर रहा है, नॉन वेज खा रहा है, है ना, निंदा चुगली कर रहा है, सिगरेट पी रहा है, ड्रिंक कर रहा है, फालतू की न्यूज देखता रहता है, एक ही न्यूज को बार बार सुनता रहता है, सब एक व्यक्ति घर पे करता है, रेगुलर अपना टाइम पास अच्छे से कर रहा है। लेकिन भक्ति के लिए वो क्या सोचता है, हमें बाहर जाना पड़ेगा। अगर आपको फ्रेंड्स कैसीनो या पब में जाना, तो क्या आप छोटे बच्चों को लेकर जाना प्रेफर करोगे, या आपको मंदिर जाना है तो आप कंफर्टेबल रहोगे? क्या लग रहा है आपको, है ना? तो क्या हमें इन कॉमन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे हैं फ्रेंड्स, कि अगर हम एज ए फैमिली डिवोशन करेंगे, इसमें सब एज ग्रुप के लोग फ्रेंड्स, चाहे वो दादा दादी, बच्चे हो, सब मिलजुल कर एंजॉय कर सकते हैं। इसमें कुछ छिपाने वाली बात, लेकिन दुनियादारी की बातें छुपाने वाली होती है ना, कुछ भी जो गलत काम करते हैं हम छुप के करना चाहते हैं, कुछ चीजें तो हम घर में कर लेते हैं, इसमें कई चीजें ऐसी भी होती है जो हम सबसे छुप के करना चाहते हैं, लेकिन अपने आप से छुप के कहां जाएंगे, भगवान से छुप के कहां जाएंगे? हमें क्या लगता है, नहीं नहीं भक्ति तो बस कहीं जंगलों में जाके करनी है, सारे गलत काम हम घर में कर लेते हैं, बट हमें लगता है भक्ति नहीं करनी। घर भक्ति तो ऐसी चीज है जिसमें हम सब इकट्ठे मिलकर फ्रेंड एंजॉय कर सकते हैं, उस टाइम को आरती कर सकते हैं, अभिषेक करते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं, इकट्ठे मिलकर सिखा सकते हैं बच्चों को कि तुम्हें भी करनी है एक माला, तुम्हें भी रोज करनी। बच्चों को भी एक अलग लेवल के स्ट्रेस होते हैं ना, जब बच्चे अपने स्टडीज वगैरह में होते हैं, है ना, हमें नहीं समझ आती, लेकिन बच्चों के अलग लेवल के स्ट्रेस होते हैं, तो ये स्ट्रेस से दूर करती है चैंटिंग, है ना, भगवान के साथ जुड़ना नेचुरली, मतलब दुखों से मुक्ति, स्ट्रेसेस से मुक्ति, है ना। तो बच्चों को हम बहुत ही यंग एज में इसको इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, भक्ति से। जो चीज हमने अभी सीख रहे हैं हम बच्चों को बचपन से सिखा सकते हैं। अब जो भक्ति, देखो जो पेरेंट्स स्पिरिचुअलिटी का जीवन जी रहे हैं, तो वो उनके लिए कितना आसान है, जिनके बच्चे छोटे हैं उनको कितना यंग एज में, सच में मेरे को ऐसा लगता है कितने खुशकिस्मत हो, ऐसे हमारे ग्रुप में ही मैक्सिमम जो लेडीज हैं वो सारी यंग है ना, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मतलब अभी बच्चे हो ही रहे हैं उनके, क्या छोटे छोटे बच्चे हैं, फोर्थ में, फिफ्थ में, फर्स्ट में, सेकंड में, ऐसे कई पेरेंट्स हैं हमारे सत्संग, है ना। तो वो उनके लिए कितना बेनिफिशियल है भगवत गीता सुनना, उनको छोटे होते बच्चों को इन चीजों में वो मतलब सिखा सकते हैं, क्योंकि जो आप करोगे ना फ्रेंड, बच्चे वो ही सीखे, बच्चे आपका बोलना नहीं सीखेंगे, बच्चे आप जो कर रहे हैं ना वो बच्चे सीखेंगे। संस्कार कोई बाहर से थोड़ी देगा, हम ही देंगे ना अपने बच्चों को संस्कार। मुझे तो ये सबसे बड़ी हैरानी ये लगती है, मतलब ड्रिंक करना सही है, भक्ति करना गलत है, है ना। मतलब हम स्मोक कर सकते हैं, फालतू की निंदा चुगली में पड़े रह सकते हैं, लेकिन भक्ति करना कैसे गलत हो सकता है? भक्ति करने के लिए हमें परमिशन चाहिए, लेकिन जो गलत काम हो रहे हैं उसके लिए हमें कोई परमिशन नहीं, उसके लिए हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं खुद को, लेकिन भक्ति करने के लिए हमें परमिशन चाहिए होती है ना। ऐसा जीवन हम जी रहे हैं, हमें क्या लगता है जो हम कर रहे हैं बस ऐसा ही जीवन सबको जीना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता ना फ्रेंड। जो भगवान कह रहे हैं स्क्रिप्चर्स, हमें वैसा जीवन जीना चाहिए, और उस वाकई उस जीवन से हमारा जीवन बदला है। मतलब अगर एक्सपीरियंस ही हो गया एक व्यक्ति को, नहीं यार ये लाइफ बेटर नहीं है, जो मैं पहले लाइफ जी रही थी वो बेटर नहीं थी, ये लाइफ बेटर है, जो मैं भगवान के साथ जुड़ के हर चीज कर रही हूँ वो बेटर है, तो बच्चों को अच्छे संस्कार हम दे सकते हैं, जनरेशन गैप खत्म हो जाते हैं। डिवोशन ही एक ऐसा रास्ता है फ्रेंड, जिसमें हमारे अंदर के विकारों का नाश होता है। एक ऐसी दवाई, एक ऐसी मेडिसिन है डिवोशन का रास्ता, जिसमें हमारे अंदर के विकारों का नाश होता है, हमारे अंदर ह्यूमिलिटी आती है, फॉरगिवनेस आती है, हमारा अहंकार खत्म होता है, हमारे अंदर लिसनिंग पावर आती है ना। यही वो रास्ता है फ्रेंड, कि ये जिसमें जो हमारी क्वालिटीज हैं वो बढ़ेंगी, है ना, तो हमारे रिश्तों में सुधार होगा, हमें पता चलेगा ना कि भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा हुआ है और हम कैसा जीवन जी रहे हैं अपने ईगो में, हमें पता ही नहीं होगा, हमें क्या लग रहा है हम खुद को ही बेस्ट मानते रहेंगे, है ना। स्क्रिप्चर्स को हम नकार देते हैं, भगवान को हम नकार देते हैं, भक्ति को हम नकार देते हैं, हमें क्या लगता है हमें बस बेस्ट जीवन हम ही जी रहे हैं। और अगर हम डीपली देखें ना, तो उन लोगों का अपना जीवन भी सही नहीं होता फ्रेंड, वो खुद भी दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी देते हैं, है ना। तो भगवत कृपा से रिश्तों में ट्यूनिंग बढ़ती है ना, बॉन्डिंग बढ़ती है, और सिर्फ यही रिश्ते नहीं हमारे सुधरते, बल्कि इस मॉडल के थ्रू अगर हम चलते हैं ना, तो जिनको हम कभी मिले ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल इस सत्संग को हम ऑलमोस्ट 3 साल से कर रहे हैं, है ना, 2020 से स्टार्ट हुए थे, 14 जुलाई से हम ये सत्संग स्टार्ट किया था 2020, 14 जुलाई 2020 से, है ना, तो 3 साल हो गए। तो इनमें से ज्यादातर लोगों से मैं मिली नहीं, ज्यादातर क्या, मेरे को लगता है मैं 99% लोगों को नहीं मिली हूँ, लेकिन फिर भी एक रिश्ता हम लोगों का बन चुका है आपस में, है ना। तो बहुत ही ब्यूटीफुल है ये डिवोशन का रास्ता, आपको नए नए रिश्ते मिल रहे हैं, है ना। ये टॉपिक बहुत ही फ्रेंड्स कॉमन है ये, है ना, कि भक्ति के लिए हमें घर बार छोड़ देना पड़ेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये समझना। और ये बात तो फ्रेंड मैं भी आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि सच में रिश्ते सुधरते हैं, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, चाहे वो बच्चों के साथ हो, है ना, या पेरेंट्स के साथ हो, अपने रिलेटिव्स के साथ हो, है ना, कोई भी रिश्ता हो, चाहे भाइयों के साथ हो, देवरानी जेठानी का रिश्ता हो, ननंद भाभी का रिश्ता हो, या डिवोटीज के साथ हो, सारे ही रिलेशनशिप बेटर बनते हैं सत्संग से पहले। मटेरियल सर्कमस्टांसेस में हम सब अलग पड़ जाते हैं, कई न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं भी पेरेंट्स से अलग, मतलब पूना में जॉब के सिलसिले में रहती हूँ, है ना, मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, तो हम बच्चों के साथ अलग तरह से ग्रो कर रहे होते हैं, सिचुएशंस अलग हैं, सर्कमस्टांसेस अलग अलग हैं, चैलेंजेस सबके अलग है। तो संसारिक बातों में पहले हम कितनी देर बात हो जाती है मदर से, 5-7-10 मिनट, है ना, हाल चाल पूछ लिया, कैसे हो, सब ठीक चल रहा है, है ना, नॉर्मल हाल चाल, है ना। हाँ, अलग कुछ स्पेशल कोई सेरेमनीज हो, जैसे कोई मैरिज आ गई या कोई बर्थडेज वगैरह आ गए, कोई फंक्शन आ गया, तो थोड़ा क्लोज हो जाते हैं कि सबके बारे में पूछो वो आए थे या नहीं, नहीं तो सब अपनी लाइफ में बिजी हैं, टाइम ही नहीं है किसी के पास कोई बात करने। लेकिन अब हमारा कॉमन टॉपिक हो गया है हमारा सबके साथ, हर छोटी छोटी बात हम डिस्कस करते हैं कि सत्संग में क्या सीखा, है ना, पूछ लेते हैं कितनी माला की, आप भोग लगाते हो, क्या भोग लगाया जा, मैं क्या लगा सकती हूँ, है ना, कई क्वेश्चंस आ जाते हैं, कोई श्लोक ही डिस्कस हम लोग आपस में कर लेते हैं, कोई बात ही डिस्कस कर लेते हैं आपस में। तो अब जो फालतू जो कॉमनली, मतलब एक कॉमन टॉपिक हो गया, भगवान की बातें डिस्कस होती है ना। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि मैं वो धागा हूँ जिससे सारा संसार मोतियों की तरह गुथा हुआ है। हमें ये बात समझ आई, जब तक हम जीवन में भगवान को ऐड नहीं करेंगे, अपने हर काम में प्रभु को साथ लेकर नहीं चलेंगे, तब तक कभी भी जीवन में फ्रेंड्स ग्रोथ नहीं हो सकती, है ना। और रिश्तों को अच्छा बनाना, मेंटेन करना, वो भी तो ग्रोथ का एक पार्ट है ना, खाली मटेरियली आगे बढ़ना कि फाइनेंशियल हम आगे बढ़ गए बस हो गया, लाइफ का पर्पज यही है, रिश्तों को भी एक अच्छा बनाना, उनको मेंटेन करना, वो भी तो ग्रोथ का एक पार्ट है। खाली पैसे में ही आगे हो गए तो वो ग्रोथ नहीं है, एक ग्रोथ है, ग्रोथ का एक छोटा सा पार्ट है, सक्सेस का एक छोटा सा पार्ट है, है ना। लेकिन रिश्तों में भी हमें आगे बढ़ना चाहिए, उनको मेंटेन करना चाहिए रिश्तों को, जो कि फैमिली हेल्थ का भी पार्ट है ना। तो जब से भगवान मध्य में है ना, तो हम देख रहे हैं रिश्तों में बहुत ज्यादा मिठास हो रही है फ्रेंड्स, सुधार होता जा रहा है, रिस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ आता है। रिस्पेक्ट लेनी तो सबको अच्छी लगती है, बट हम देते नहीं है ना, वो कॉन्सेप्ट समझ आता है। लेट गो का एटीट्यूड समझ आता है कि ठीक है कोई बात होगी, छोड़ो यार आगे बढ़ो, है ना। रिलेशनशिप्स में ईगोज खत्म होती है ना, अभिमान शून्य होता है, मतलब आप टूटते चलते हो, सिंपल बात है। जो आपका अंदर का जो नेगेटिव क्वालिटीज है ना फ्रेंड्स, वो टूटती जाती है, भगवान मतलब आपको अंदर से प्रहार करते जाते, भगवद गीता के श्लोक आप पे प्रहार करते हैं, टूटते चलते हो आप डे बाय डे बाय डे बाय डे, है ना। फॉर एग्जाम्पल एक स्टोरी सुनी है ना आपने, यूनिटी स्ट्रेंथ, जिसमें एक एक लकड़ी को आसानी से तोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर बंचीज हो लकड़ियों का तो उसको तोड़ना मुश्किल होता है ना। उसको हम इस तरह से समझते हैं कि देखो बंडल तो है, लेकिन उस बंडल को बांधने के लिए क्या है, बहुत सारी फैमिलीज को हम इकट्ठे देखते हैं, लेकिन उनको बांधने का सोर्स मनी होता है, पैसा होता है, लेकिन जो अध्यात्म में आगे बढ़ेगा उनमें जो बांधने का सोर्स होगा ना फ्रेंड्स, वो भगवान होंगे, वो भगवान स्वयं होते हैं। मटेरियलिज्म की रस्सी फ्रेंड्स कमजोर है, एक ना एक दिन टूट ही जाती है, लेकिन अध्यात्म की रस्सी बहुत मजबूत होती है फ्रेंड्स, क्योंकि भगवान सबको साथ में लेकर चलते हैं। और ये सब एक्सपीरियंस कर रहे होंगे फ्रेंड्स, जो भी 2020 में चल रहे हैं हमारे साथ, उन सबका रिलेशन, चाहे फैमिली में अपने हस्बैंड के साथ हो, अपने रिलेटिव्स के साथ हो, बच्चों के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, उनका रिलेशनशिप बेटर हुआ होगा, क्योंकि अब बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हम लोग आपस में डिस्कस कर लेते हैं, तो रिलेशनशिप ज्यादा इम्प्रूव होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ है, क्योंकि अब हमारे सबके पास कॉमन टॉपिक्स होते हैं। लेग पुलिंग की हैबिट खत्म हो जाती है, जैसे अब कोई बात हो तो लेग पुलिंग होती है, एक कहता है कि नहीं मेरा पॉइंट ज्यादा वैलिड है, दूसरा कहता है नहीं नहीं मेरा ज्यादा वैलिड पॉइंट है, है ना। देखिए ये जब कॉमन बातें होती हैं शेयर करने के लिए, एक दूसरे की मदद करने वाले, हम हर मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं, ये सब बातें फ्रेंड डिवोशन करने से ये सब पॉसिबल हुआ है। और डिवोशन क्या होती है, भक्ति क्या होती है, ये सब बातें हम भगवद गीता से सीखी। और अगर कोई एक इंडिविजुअल भी अपने पर मेहनत कर रहा है ना, पूरी फैमिली में सिर्फ एक इंडिविजुअल भी अपने पर मेहनत कर रहा है ना फ्रेंड, तो धीरे धीरे सब उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाते हैं, ना, पहले एक एक ही व्यक्ति चलेगा ना, आप भगवत गीता सुन रहे हो तो आप ही चलोगे, है ना। बस आपने यही ध्यान देना, आपने किसी और को चलाने की कोशिश नहीं करनी। आपने अपनी ये बातें अपने, अगर हस्बैंड सुनना चाहते हैं तो सुनाओ, और रिलेटिव सुनना चाहते हैं सुनाओ, बच्चे सुनना चाहते हैं सुनाओ, अगर कोई नहीं सुनना चाहता आप चुपचाप इस रास्ते पे नित्य निरंतर चलते रहो। जब आप में वो बदलाव देखेंगे तो सब कुछ अपने आप होगा फ्रेंड्स। अब आप भी ये सब बातें शेयर कर पाओगे, है ना। तो फैमिली के रिश्ते भी सुधरते हैं और कैरियर में भी, जॉब्स में, बिजनेस में भी रिश्ते सुधरते हैं, है ना। क्योंकि अब अंदर से क्लैरिटी हो जाती है कि मुझे गलत नहीं करना, मुझे भगवान जो बता रहे हैं बस उसके अकॉर्डिंगली लाइफ जीनी है, मुझे कुछ भी गलत नहीं करना, मुझे ना खुद गलत जाना है और ना ही मैं दूसरों को ही गलत जाता देख सकती हूँ। अब मैं ऐसी अंदर से फीलिंग्स आ जाती है ना, और ये फीलिंग आ जाती है कि मैं दूसरों को भी अगर अच्छा रास्ता दिखा पाऊंगी तो मैं जरूर दिखाऊंगी। मुश्किलें तो फ्रेंड्स आती हैं, लेकिन हमने चॉइस लेनी, क्या हमें मुश्किलों से घबरा कर उल्टा रास्ता पकड़ना है या हमें अच्छा और सच्चा रास्ता चूज करना, और हम फिर भगवान की नजरों उनकी गुड बुक्स में आए। हमारा पर्पस ये होना चाहिए, है ना, कि हम एक सही और सच्चा रास्ता पकड़े और भगवान के बेस्ट स्टूडेंट बने, भगवान के बेस्ट डिवोटी बने, है ना। तो एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, और हमारी ये ड्यूटी है कि हम हर चीज को भगवान की खुशी के लिए, उनकी सेवा के लिए यूटिलाइज करें, है ना। रिलेशनशिप्स को फ्रेंड्स हम इग्नोर नहीं कर सकते, रिलेशनशिप्स भी हमें ऐसे निभाने चाहिए ताकि परमात्मा खुश हो। हर आत्मा में परमात्मा का वास है, अगर हम ऐसे चलेंगे फ्रेंड्स तो परमात्मा हमसे खुश होंगे, है ना। और भगवत गीता में भगवान भी हमें वासुदेव कुटुंबकम के बारे में समझा रहे हैं, सिखा रहे हैं। भगवान के नाम में, उनकी एसोसिएशन में इतनी पावर है कि वो सबको अट्रैक्ट करती है। जब पॉजिटिविटी एक्वायर करते हैं तो वो मैनिफेस्ट होती है। अगर हम भगवान के रास्ते पर चलते रहते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली है कि वो कृपा होती है। जब भगवान देखते हैं कि बच्चा मेरे रास्ते पे चल रहा है ना, जो सही है, सही का साथ देता है, तो भगवान की कृपा तो होगी ना उस बच्चे पे, ऑटोमेटिकली कृपा होती है फिर। तो भगवत कृपा से हम प्रभु की शरण में जाते हैं और हमारे रिलेशंस भी इम्प्रूव होते हैं। जैसे जैसे हमें फ्रेंड्स भगवत गीता का ज्ञान होता है तो हमें रिश्तों की वैल्यू भी समझ आती है ना। तो फिर हमें समझ आता है कि हमें प्रभु का थैंक यू करना है, शुक्राना करना है, शिकायतें नहीं करनी, है ना। कितना कुछ हमें मिला है, मदद करना दूसरों की सीखनी है, दूसरों के दुख में दुखी होना सीखना है, दूसरों के खुशियों में खुश होना आना चाहिए। करते हम उल्टा है, दूसरों के दुखों में हम खुश होते हैं और दूसरों के खुशियों से हम दुखी होते हैं, तो फिर परमात्मा कैसे हमसे खुश हो जाएंगे फ्रेंड्स, है ना। जैसे परमात्मा के मैं बच्ची हूँ वैसे दूसरा भी है वो बच्चा है भगवान का, है ना। तो जब एक व्यक्ति रेगुलरली मेहनत करता है अपने आप पे आत्म सुधार की तरफ, तभी फ्रेंड्स नेगेटिविटीज घटती है। जब हम नित्य निरंतर सत्संग साधना सेवा सदाचार से जुड़ते हैं तो हमें भगवान से एनर्जी मिलती है, तो हम आसानी से ये सब चीजें हम सब कुछ कर पाते हैं फ्रेंड। बट है ये ग्रेजुअल प्रोसेस, है ना। तो आपने सिर्फ ये ध्यान देना कि मैं सत्संग से पहले, पिछले साल मैं सत्संग से पहले क्या कर रही थी, और अब 2023 जून में ये मेरा सत्संग शुरू हुआ है, तो क्या प्रोग्रेस रहेगी मेरी इस साल, है ना। तो परसेंटेज में अपनी ग्रोथ चेक करते चलना फ्रेंड, है ना। तो रिजल्ट्स आपके सामने होंगे और फिर हम और डिटरमाइंड होकर इस रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। भगवान पर और ज्यादा विश्वास होता है हमारा, हम और भक्ति में भगवान की तरफ बढ़ते जाते हैं। जब वो चीजें हमारी पूरी होनी शुरू हो जाती है, भगवान पे विश्वास हो जाता है, हमारी नेगेटिविटीज पे वर्क होने शुरू हो जाता है, आत्म सुधार की तरह आगे बढ़ने शुरू हो जाते हैं, तो हमारा भक्ति का ग्राफ आगे बढ़ता जाता है, हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते जाते हैं। और फिर क्या होता है, फिर लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस होनी है। वो तो ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी, आत्म सुधार होगा, तो लाइफ में हैप्पीनेस और पीस तो आनी ही आनी है ना। भगवान कृष्णा डायरेक्ट आते हैं, है ना। फिर हमें ऐसा लगता है कि हाँ, कैसे मैं एक कुएं में खड़ी थी, बैठी थी, और कैसे एक हाथ आया और कैसे भगवान ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। सब आप सब महसूस कर रहे होंगे फ्रेंड्स। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, घर घर मंदिर हर मन मंदिर, एवरीवन हरी हरी बोल। तो फ्रेंड्स अब रिव्यूज की तरफ चलते हैं कि आज के सत्संग से आपने क्या सीखा, या आपके कोई एक्सपीरियंस है तो आप शेयर कर सकते हो फ्रेंड्स। हरी बोल,
हरी हरी बोल,
माँ बात कर लो, हरी बोल।
हाँ जी, हरी हरी बोल मोना जी। हमेशा की तरह आज का आपका टॉपिक ही बहुत अच्छा था, और सबसे पहले तो सभी डिवोटीज को एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसे आप बता रहे थे कि क्या भक्ति के लिए घर परिवार छोड़ना पड़ता है, ये टॉपिक आज का, तो भक्ति से परिवार घर नहीं छूटता है, बल्कि परिवार में एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी होती है। क्योंकि मैं 2017 में गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी थी, तो श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करती हूँ, आपके साथ मेरा तीसरी रीडिंग है, तो अब ऐसे लगता है कि हमारे अपने परिवार में, जैसे आप मेरी बेटी हो, तो पहले बात कोई घिसी पिटी बातें करते थे, है ना। तो अब सभी को ना एक टॉपिक, सबका एक कॉमन टॉपिक हो गया। जैसे रात को भी खाना खाने के बाद भी टेबल पे बैठते हैं तो छोटे बच्चे भी ना, तो वो भी डिस्कस करते हैं हम किसी ना किसी टॉपिक पे। तो वो मतलब छोटे बच्चों में मेरा पोता है ना, उसके साथ इतनी अच्छी मेरी बॉन्डिंग है कि मैं आपके साथ बता नहीं सकती कि कैसी बॉन्डिंग हो गई है, कि हम आपस में कैसी बातें करते हैं। तो पहले ऐसा तो नहीं था, जब हम भक्ति के रास्ते पर नहीं चले थे तो हमारे अंदर नेगेटिविटी बहुत भरी रहती थी और हर वक्त निंदा चुगली, ये जैसे बोलते ना कि हम लोगों का धर्म बन गया हुआ। पूजा तो करते थे हम लोग, शुरू से ही पूजा पाठ करते थे, लेकिन अंदर हमारे कोई फीलिंग्स नहीं होती थी परमात्मा के लिए। एक रूटीन वर्क की तरह करते थे, जो जलाई तो बस थोड़ा सा प्रसाद रखा, वो पूजा हो। लेकिन अब सारा परिवार, छोटे बड़े बच्चे, सभी परमात्मा के साथ अटैच हो गए। भोग लगाते हैं जब, तो बच्चों को भी बहुत एक्साइटमेंट होती है, छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बहुत एक्साइटमेंट होती है। घर में कुछ भी मिठाई फ्रूट आएगा तो बच्चों को भी ये पता होता था, होता है कि पहले परमात्मा को भोग लगेगा। और अब पहले जैसे होता था कि कोई भी घर की ड्यूटी है, काम लेडीज को था ना कि हाय अब मैं थक गई, अब मैं नहीं कर सकती, ऐसे मतलब हर की एक रूटीन में मतलब बोलते हैं हम सब। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ऐसा लगता है कि घर की जो कोई भी ड्यूटी जब है, हम मैं ये समझ के हम सब करते हैं कि परमात्मा ने मुझे ये ड्यूटी दी है, उन्होंने शायद मुझे इस काबिल समझा है तो उन्होंने मुझे ये ड्यूटी दी है, तो मुझे निष्काम भाव से हमें ये ड्यूटी करनी है और खुशी खुशी करनी है। क्योंकि लाइफ में सुख दुख तो हमेशा ही आएंगे, जैसे गर्मी सर्दी आती है वैसे सुख भी आएंगे, दुख आएंगे, दुख आएंगे, फिर सुख आएंगे। तो जैसे बोलते हैं ना कि सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, मैं छोड़ू किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। ये सुख दुख हमारे, बोलते ना कोई दुख आते हैं सुख आते हैं, हमारे कर्म है। लेकिन अब हमें दुख आए तो हमें ये सोच के कर्म नहीं करने हैं, हमें ये सोच के कर्म करने हैं, अच्छे से अच्छे कर्म करने हैं कि हमारे ये इतने अच्छे हमारे कर्म हो कि ये दुख हमारे ऐसे ही कट जाए, हमें अंदर से कोई एहसास ना हो। जैसे हम सुख के टाइम अपना जीवन बिताते हैं, वैसे दुख में भी हम स्टेबल रहे। और पहले होता था कि टाइम को हम बहुत वेस्ट करते थे, लेकिन अब कहीं गॉसिप होता है तो वहां से ऐसा लगता है हम यहाँ से उठ जाएं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। और कहीं भी बैठे, इकट्ठे होकर बैठते हैं तो ऐसा लगता है हम सिर्फ परमात्मा की ही बातें करें और उनका ही गुणगान करें। पहले मुझे सच्ची बोलूं, मुझे बहुत ही अंदर से ना ऐसे गिल्ट बोल सकते हो कि मैं, सभी वृंदावन जाते हैं तो मैं नहीं जाती। लेकिन अब लगता है कि मेरा घर ही वृंदावन है, क्योंकि वांके बिहारी जी मेरे घर में विराजमान है और सारा मेरा परिवार कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ है। तो सच में लाइफ में बहुत ही चेंजेस आई और मैंने जो कुछ सीखा भगवद गीता का अध्ययन करने से, जो कुछ सीखा उसको मैं इम्प्लीमेंट करने की बहुत ही कोशिश करती हूँ। जितना मैं इम्प्लीमेंट कर सकूँ तो मेरे को लगता है मैं ज्यादा से ज्यादा उसको अपनी लाइफ में उतारूँ। पहले हम दूसरों को जज करते थे, लेकिन अब सेल्फ रियलाइजेशन होती है कि मैं कहाँ पे गलत हूँ, कहाँ पे मैं सही हूँ, कि मेरी किसी बात से किसी को हर्ट ना हो। पहले होता था फटाफट बात करनी है, चाहे किसी को हर्ट हो चाहे ना हो, मतलब सोच नहीं होती। लेकिन ये सब कुछ भगवत गीता का अध्ययन करने से, भक्ति के रास्ते पर चलने से मेरे अंदर चेंजेस आई। थैंक्स करना नहीं आता था परमात्मा का, हर वक्त बोलते हैं 24 घंटे परमात्मा का थैंक्स करें हम कि परमात्मा आपने मेरे को कितना कुछ दिया है। लेकिन हम लोग इतना भी टाइम नहीं निकालते थे कि परमात्मा के पास बैठे, उनकी थोड़ी पूजा पाठ करें, उनका भजन कीर्तन करें। ये सब कुछ मैंने भक्ति के रास्ते पर चलते हुए सीखा है और मेरा परिवार भी वासुदेव कुटुंब बन गया है। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मोना जी आपका बहुत बहुत थैंक्स।
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच मम्मा, बहुत ही अच्छी तरह से आपने सारे टॉपिक को अच्छे से क्लेरिफाई कर दिया। तो जैसे कि आपने बताया कि 2017 में मैं जुड़ी थी भगवद गीता से, है ना, गोलोक एक्सप्रेस से। तो देखो वही बात है ना कि जिसने सुनना है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है ना, उसके जीवन में ही परिवर्तन आना है। पहले हम अपने जीवन को बेटर करते हैं, फिर हम दूसरों के जीवन को भी बेटर करने के बारे में सोच सकते हैं। जो हमारे पास होता है ना फ्रेंड्स, हम वही दूसरों को देते हैं। सिंपल बात, पॉजिटिविटी होगी तो पॉजिटिविटी बांटेंगे, नेगेटिव होगा कोई व्यक्ति तो वो नेगेटिविटी बांटेगा, है ना। तो हमें जो भक्ति को हम पूजा पाठ से रिलेट करते थे पहले, है ना, पूजा पाठ तो हम बचपन से कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली भक्ति क्या है ये हमने भगवद गीता से सीखा, भगवान क्या कह रहे हैं, अगर उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी लाइफ जियेंगे तो ऑटोमेटिकली ना तभी तभी जीवन में परिवर्तन आएगा। अगर हमने कर ली पूजा पाठ वही सुबह शाम वाली भक्ति और फिर कहीं अपना मनगढ़ंत जीवन जिया, फिर कोई जीवन में परिवर्तन नहीं आने वाला है। परिवर्तन तभी आएगा फ्रेंड जब हम अपनी आत्मों में परिवर्तन लाते हैं, जब हम अपनी आत्म सुधार की तरफ आगे बढ़ते हैं। जो बाहर की तरफ ध्यान है ना हमारा, वो क्या बोल गया, वो क्या कर गया, है ना, उसकी जगह जब हम अपने भीतर की तरफ मुड़ जाते हैं ना फ्रेंड, सारा ध्यान ही अपने अंतरात्मा की तरफ, अपने अंदर की तरफ हो जाता है कि मैं क्या कर सकती हूँ बेटर, अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए पहले तो अपनी लाइफ को बेटर करना है ना, दूसरों की लाइफ को बेटर करने से पहले मैं पहले अपनी लाइफ को बेटर करना है ना। तो ये सब बातें हम भगवद गीता से सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच उमा इसको क्लेरिफाई करने के लिए, थैंक यू। हाँ जी कुमार जी, अब आप बात कर सकते हो। हरी बोल।
हरी हरी मोनादी एंड एवरीवन ऑफ द मोनादी का जो ये आज का सत्संग था ना बहुत ही बढ़िया था, और ये जो आप ले दो आज ये तीसरा नए नए टॉपिक से जो आप हमारे दिल और दिमाग की परते खोल रहे हैं ना उसका आनंद ही कुछ और। जो आज का टॉपिक था इज इट नेसेसरी टू लीव होम एंड फैमिली फॉर डिवोर्स, तो इसके लिए जो जवाब है वो है कि बिल्कुल नहीं। यदि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए डिवोशन करते हैं तो वो भी हमें अपने गंतव्य को प्राप्त, तब भी हम अपने गंतव्य को प्राप्त करते हैं। जो छोड़ना है वो क्या छोड़ना है कि हमें अपने अंदर के विकार, ना कि घर। यदि हम अपने अवगुण छोड़ देते हैं और पवित्रता को अपनाकर भक्ति में आगे बढ़ते तो घर छोड़ने की जरूरत ही अनुभव नहीं होती। अपने आप को प्रभु को समर्पित करते हुए हम अपनी ड्यूटी करते हैं तो वो ही भक्ति है। इसके लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिवोशन एक ऐसा रास्ता है जिससे हमारे विकार खत्म हो जाते। भक्ति तोड़ने और छोड़ने का रास्ता नहीं है, भक्ति परिवार से जोड़ने का रास्ता है। हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल रिव्यू एज ऑलवेज कुमुद जी, ब्यूटीफुली आपका रिव्यू रहता है हमेशा। और वही बात है ना कि जो चीज हमने सीखनी है ना वो नहीं सीखेंगे हम, जो चीज नहीं सीखनी है वो हमें पता, क्योंकि हमने वो करना नहीं है। हम उसी चीज में अपना दिमाग लगाते हैं फ्रेंड, जो चीज हमें लगता है कि हमें करनी चाहिए, है ना, उसमें तो हम पूरा 100% लगा देंगे उसको, उस चीज को हम पूरा करके छोड़ते हैं। आप सोचो कभी अपनी लाइफ के बारे में, है ना, जो चीज हमने लगाना हमें कि ये चीज हमें करनी चाहिए उसमें हम पूरा दिमाग लगा देंगे, पूरा 100% दे देंगे, है ना। और जो भक्ति के लिए कुछ करना है तो हमें क्या लगता है कि नहीं नहीं यार कहीं सच में वो मुझे बोल रहा था कि मैं भक्ति में आगे बढ़ रही हूँ तो कहीं मैं घर परिवार ही ना छोड़ दूँ, है ना, तो हम दूसरों की बातें फटाफट से ले लेते हैं, है ना। भक्ति में आगे बढ़ना मतलब अपनी लाइफ को बेटर करना, मतलब समर्पण हमें खुद को करना है ना, अपने खुद को जब हम परमात्मा को समर्पित कर देंगे, परमात्मा की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार अगर अपनी हम लाइफ जिएंगे तो लाइफ ने तो बेटर होना ही है ना। जो दुख हम सहते हैं, दुख में पड़े रहते हैं, हर वक्त दुखी रहते हैं, उन दुखों से निजात कब मिलेगी, जब हम परमात्मा की सुनेंगे। या तो हम खुद की सुन लें या फिर हम भगवान की सुने, दो में से एक की तो सुनेंगे ही, है ना, या तो माया की सुनते हैं या भगवान की सुनते हैं। हम हैं माया के चक्रों में पड़े हुए, हमें क्या लगता है जो हमारा मन बोल रहा है हमें वही करना है ना। तो जब परमात्मा की एक्चुअली हम सुनने लगते हैं तो अपने आप ही फिर चेंजेस आएंगी और लाइफ बेटर होती है, है ना। थैंक यू सो मच कुमार जी। हाँ जी कोई और जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है फ्रेंड्स। हरी बोल।
हरी हरी बोल। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक थर्ड रीडिंग शुरू करने के लिए। आपका ये थर्ड सेशन है गीता का जो आप पढ़ा रहे हो, और मैं आपके साथ पहले सेशन से ही जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ कई बार बीच में नहीं ज्वाइन कर पाता, लेकिन मैं आपका सारा पूरा अच्छे से सुनता हूँ। आज जो आपका टॉपिक था बहुत अच्छा था कि भक्ति के लिए क्या हमें घर बार छोड़ना, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज सभी के लिए, हम सभी के लिए है कि हम अपनी ड्यूटीज को छोड़ के यदि हम माला करने बैठ जाएंगे या पूजा करने बैठ जाएंगे या घर छोड़ के चले जाएंगे उसका कोई मीनिंग नहीं है। भगवान ने यदि अर्जुन को भी जो गीता का भगवद गीता का जो जब सुनाई थी तो वो उसके कर्म स्थल पे सुनाई थी कि तुझे अपना कर्म करना है। तो एक बहुत एक मैनुअल है जो भगवद गीता जिससे हमें ये बताता है कि पहले अपने कर्म पे फोकस करो, उसके साथ साथ भगवान को भी याद करो। मैं फॉर्चुनेट हूँ कि हम अपना हिंदू धर्म का तो हम सुनते, लेकिन मुझे जैसे हम गुरुद्वारे में भी जाते थे आप उनकी वाणी सुनो, और मैं एक कैथोलिक स्कूल का हमारा क्लाइंट है वहां पे जाता हूँ तो वो उनका भी कभी मैं अटेंड करता हूँ, तो वो भी एक फोकस करते हैं अपने जॉब के ऊपर, ऑलवेज थैंकफुल टू गॉड की व्हाट वी हैव बीन गिवन, क्या हमें मिला है, क्या हमें जो खाना भी मिला है, हमें जो काम करने को मिला है, जो हम आज खड़े हैं यहाँ पे, वो हमेशा थैंकफुल टू होते हैं हमें गॉड के कि व्हाट वी आर टुडे इज बिकॉज ऑफ यू. तो ये सिर्फ सेम चीज भगवत गीता में भी ऐसे ही क्लियरली बताई गई है कि आपको अपने कर्मों के साथ बिल्कुल पहले कर्म आपके फोकस में होने चाहिए, आपकी डिवोशन, आपको भगवान को याद करना है और थैंकफुल होना है. और ये बहुत अच्छा कि देखिए, ये नहीं कि आप सब कुछ छोड़ के चले जाओ और फिर आप भगवान, उसका कोई मीनिंग ही नहीं. आई थिंक जो मेरी समझ है, उसका कोई मीनिंग नहीं है. कि ठीक है, होंगे वही आपने कहा कि एक्सेप्शनली तो बहुत सारे लोग, कुछ लोग हो सकते हैं जो छोड़ छाड़ के चले गए और अपनी फैमिली उनके पीछे डिस्टर्ब है और फैमिली को कोई फोकस नहीं, तो वो कोई पॉइंट नहीं है कि आप उस लाइन पे चलते. हाँ, आपने जो कर्म कर रहे हो डे टू डे, ये हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हुई है. कर्म भी एक भगवान की एक वो है. हम वही देखते हैं कि ऐसे काफी सारे लोग होंगे जिनके पास काम करने का भी कुछ नहीं होगा, चाहे वो वर्क प्लेस पे या घर पे या कहीं पर भी. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोगों को दी है, तो हमें बहुत अच्छे से निभानी है. और भगवान की तरफ हमें एक बिल्कुल डेडिकेशन से उनका थैंकफुल करना है. थैंकफुल का मतलब ये है कि जब हम भगवान के पास बैठे हैं, उनको स्मरण करने, वो एक थैंकफुलनेस ही है कि आप जो भी हैं हम आपकी वजह से ही हैं. तो ये आपने बहुत अच्छे से टॉपिक समझाया. हाँ, जब आप इस रास्ते पे चलोगे तो बहुत लोग क्रिटिसाइज करने वाले मिलेंगे, तो उनको अवॉइड करना है. बोलते हैं ना कि एक जो मूर्ख आदमी होता है उसके पास बहुत सारे हर क्वेश्चन के जवाब है, उसके पास हर चीज का, आप जो भी उससे तर्क करोगे उसके पास हर चीज का रिप्लाई मिलेगा. लेकिन जो समझदार आदमी है उसके पास क्वेश्चंस रहेंगे, उसके साथ जब कोई डिस्कस, कुछ जानने की इच्छा है और समझने की इच्छा है. तो एक बहुत अच्छा कंपैरिजन है, हमें जानना है, समझना है और सीखना है और अपने आप पे इंप्लीमेंट करना है, ये हमारा होना चाहिए. ना कि हम अननेसेसरी क्रिटिसाइज में पड़े या लोग, किसी का धर्म छोटा या बड़ा नहीं है, किसी के भगवान छोटे बड़े नहीं है. कोई किसी चीज की पूजा करता है, कोई किसी चीज की पूजा करता है, लेकिन अल्टीमेटली वो जो एक पर्पज है, एक सबको भगवान को एक थैंक्स करना है. और जो भी हमारे पास है उसके लिए हमें हर हाथ जोड़ के करना है, भगवान जो भी है हम आज आपकी वजह से, इसी चीज की हमारे में एक फीलिंग होनी चाहिए. ना कि जो हमें मिला है वो हमारी वजह है, वो एक अहम है, वो ऐसा कुछ नहीं है. जो भी कुछ मिल रहा है, कर्म तो बहुत दुनिया कर रही है, लेकिन जो मिल रहा है वो एक आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, उसका हमेशा थैंकफुल होना चाहिए. हरी हरी बोल.
हरी हरी बोल. हरी हरी बोल. थैंक यू सो मच संजीव जी. आज सत्संग सुनने के लिए सबसे बड़ी बात है कि आज आपकी छुट्टी है तो आप सुन रहे हो सत्संग, अदरवाइज आप ऑफिस होते तो सुन नहीं पाते हो. तो बहुत ही अच्छी तरह से आपने इस टॉपिक को अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया. और सच में ये बात तो है कि हम अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट नहीं करते हैं, हमें क्या नहीं मिला है, क्या नहीं दिया है हमें. 10 में से 8 चीजें मैं हमेशा बोलती हूँ अपने सत्संग, 10 में से 8 चीजें मिलती हैं, 2 चीजें नहीं मिलती तो हम उसके बारे में रोते रहते हैं, है ना. लोगों को वो 8 चीजें भी नहीं मिली है फ्रेंड्स, है ना. अपना देखें, सब बहुत सारी चीजें होंगी जो हमें मिली हैं बिना मांगे, परमात्मा ने हमें दी है ना. लेकिन हमारा फोकस क्या होता है, हमेशा याद रखना फ्रेंड, हमारा ह्यूमन टेंडेंसी है ये कि जो चीज हमें नहीं मिलती हमारा ध्यान उधर ही जाता है, है ना. 10 में से 8 मिली है उसकी तरफ नहीं जाएगा, जो 2 नहीं मिली है उस पर पूरा फोकस होता है. अगर वो 2 मिल जाती तो कोई और 2 होनी कि जो नहीं मिली, है ना. तो भगवत गीता पढ़ने से, भगवान के रास्ते में चलने से पहले हम अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करना सीखते हैं. और दूसरा पॉइंट आपने कहा, बिल्कुल, इस रास्ते में चलने से बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी मिलता है ना. बहुत सारे लोग आपको कुछ कुछ बोल जाएंगे, है ना. जब आप इस रास्ते में चलोगे, जो नए डिवोटीज उनको बोल रही हूं, उनको कई बार घर से क्रिटिसिज्म मिलता है और कई बार बाहर से मिलता है ना. तो बस हमें किसी की बात नहीं सुननी, हमें चुपचाप नित्य निरंतर अपने रास्ते में बढ़ते जाना है आगे. बस अंदर यही सोचना है कि मुझे भगवान के रास्ते में आगे बढ़ना है, बस मुझे भगवत गीता सुननी है, मुझे भगवान की इंस्ट्रक्शन सुननी है ना. वैसे हमें अपने कितने सारे स्क्रिप्चर्स है, वो कितने वेद है, कितने उपनिषद है, तो हम वो तो पढ़ नहीं पाए कभी. हमारे सारे स्क्रिप्चर्स का सार है भगवत गीता. तो हमें कम से कम लाइफ में भगवत गीता तो पढ़नी ही चाहिए, है ना. भगवत गीता हमें ऐसे पढ़नी चाहिए जैसे हम सांस लेते हैं, जैसे हम खाना खाते हैं. तो ये स्क्रिप्चर्स हमारे मैनुअल्स हैं, हमें जीवन जीना सिखाते हैं, है ना. अगर हमें इस अपने मैनुअल्स ही नहीं पता होंगे तो हम कैसे जीवन जी सकते हैं. फिर हम वही अंधकार वाला जीवन जिएंगे जो पहले भी जीते आ रहे हैं, है ना. तो आपको चेंजेस कैसे पता लगेंगे, जब आप इस रास्ते में चलोगे, है ना. 1-2 साल आप नित्य निरंतर चलते रहोगे तो आपको अपने आप ही अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन दिखेंगी, है ना. थैंक यू सो मच संजीव जी.
एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, अभी रिसेंटली एक मैंने सुना एक्चुअली. हमारी फैमिली का एक बच्चा है, वो बहुत अच्छे से वो भगवान कृष्णा की तरफ अच्छे से डिवोशन इन सेंस, बस मुझे लगता है शायद उसको एक बहुत एक इंजॉय मिल रहा है, बहुत एक अच्छी फीलिंग आ रही है. जो एक कृष्णा की तरफ बढ़ा है, उसको उसने वृंदावन जाता है बच्चा हमारा, और भगवान के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है. तो हमारी फैमिली में ही क्रिटिसिज्म करने वाले भी हैं, अरे तू तो अभी तो यंग बच्चा है, 22-23 साल का बच्चा है, तू उन चीजों में चला. तो उसका उसने एक बहुत अच्छे से पोलाइटली रिप्लाई किया, देखो भैया कि ठीक है आप कह रहे हो कि मैं मुझे ये सब करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट यदि आप मुझे बताइए आप हो मंदिर जाते हो, आप इस मंदिर गए, उस मंदिर गए, उस मंदिर गए, तो मैं भी तो वही कर रहा हूँ। तो एक छोटे से बच्चे का एक बड़े का रिप्लाई था, कितना पोलाइटली, कितना रिस्पेक्टफुली, और उस बच्चे की मैं बहुत मतलब ग्रेटनेस है कि वो अपनी लाइफ के साथ साथ उसने भगवान कृष्णा को भी ऐड किया और बहुत अच्छे से वो काम कर रहा है, बहुत अच्छे से मुझे सुनने को मिलता है। मेरी शायद इसके ऊपर डिस्कशन ही आपके तो होती रहती है, तो दैट इज व्हाट पीपल विल कम एंड डिस्टर्ब यू कि यार, और आप शायद उसको छुपाओगे भी चीजों की, यार यार नहीं उसको नहीं पता, नहीं नहीं आप जो है ठीक है, एक्सेप्ट इट और बढ़ते जाओ, लोग बहुत मिलेंगे, जस्ट अवॉइड देम, आर्गुमेंट में नहीं बढ़ना। हरी हरी बोल,
हरी बोल, हरी हरी बोल। हाँ जी बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट आपने ये बताया कि वाकई क्रिटिसिज्म मिलता है फ्रेंड्स, है ना, चाहे बच्चे हो चाहे हम लोग हो, तो बहुत ही, हम लेडीज को तो बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिलता है, है ना, घर में भी बाहर में, कि भक्ति बहुत भक्ति कर रही है, ऐसा है वैसा है, है ना, गुस्सा तो तेरा कम नहीं हुआ। सबसे बड़ा पॉइंट क्या मिलेगा आपको, आप चल रहे हो ना, नए नए जो डिवोटी है, यार तुम तो भगवत गीता पढ़ रही हो, रोज सत्संग सुनती हो, लेकिन तुम्हारा गुस्सा तो कम नहीं हुआ, है ना। तो ऐसे ही जो ये बात कर रहे हैं, कोई बच्चा जैसे हमारे ही रिलेटिव में है, तो जैसे बच्चे चलते हैं तो उनको भी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ता है। मैं वही आंसर करती हूँ सबको कि क्या ड्रिंक करना ठीक है, नॉन वेज खाना ठीक है, लड़कियों को छेड़ना ठीक है, लड़कियों से अफेयर करना ठीक है ना, वो ठीक है, तो ये भक्ति करना कैसे गलत हो सकता है। एक बच्चा जा रहा है पब में, है ना, रोज वो 5,000 उड़ा के आता है, ड्रिंक्स करता है, नॉन वेज खाता है, और एक बच्चा जा रहा है वृंदावन, वो कैसे गलत हो सकता है। क्या आपको आपके अंतरात्मा से आप पूछो, क्या ये गलत हो सकता है, है ना। एक एक व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है और एक व्यक्ति पूरा दुनियादारी का जीवन जीता, तो भगवान किससे खुश होंगे, आप खुद ही सोचो, किसका दिमाग सही से चलेगा, कौन लाइफ में ज्यादा ग्रोथ पकड़ेगा कल को, है ना, जो भक्ति में आ गया सिंपल, है ना, वही उसका दिमाग भगवान शांत कर देते हैं, मतलब अंदर से जो फालतू नेगेटिविटीज है इतनी निकल जाएंगी कि व्यक्ति इतना पॉजिटिव हो जाता है कि पॉजिटिविटी के अलावा कुछ आता ही नहीं है दिमाग, सही करना है बस यही आता है दिमाग में, कि मैं कैसे अपना बेस्ट दे पाऊँ, उस बच्चे का ज्यादा अच्छा हो जो एक सही जीवन जी रहा है, जो भगवत गीता की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार लाइफ जीता है, उसका जीवन सही होता है ना फ्रेंड्स। हाँ जी, थैंक यू सो मच संजीव जी। हाँ जी, कोई और है जो अपनी लर्निंग शेयर करना चाहता है फ्रेंड्स। हरी बोल,
हरी हरी बोल।
हाँ जी, हाँ जी पूजा जी, हाँ बात कर दो।
हरी बोल एवरीवन, थैंक्स मोनाली, थैंक्स अ लॉट। आज का जो टॉपिक आपने करवाया वो भी काफी इंटरेस्टिंग था। आज टॉपिक था कि क्या भक्ति करने के लिए घर छोड़ना जरूरी है। आज के टॉपिक से मेरी ये लर्निंग बनी है कि जैसे कुछ लोगों की ये थिंकिंग होती है कि हमें शुद्ध भक्ति करने के लिए अपना घर गृहस्थी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन जैसे कि आपने हमें ध्रुव जी की, भक्त प्रहलाद जी की एग्जाम्पल दी, इससे हमारी ये समझ बनती है कि हमें अपनी गृहस्थी में रहते हुए भी शुद्ध भक्ति कर सकते हैं, और वो हम इस तरह कर सकते हैं कि जो ड्यूटीज, जो कर्म हमें प्रभु ने दिए हैं, उसको हम पूर्ण निष्ठा से, पूरी डेडिकेशन से, बिना कंप्लेंट किए हुए प्रभु को समर्पित करके करें, हर सिचुएशन को स्टेबिलिटी से कामली हैंडल करें, ना ज्यादा खुश हों और ना ज्यादा दुखी हों, संभाव में जीने की कोशिश करनी है, हमें खुद को जानना है, प्रभु को जानना है, ना कि दूसरों की लाइफ में ताका झांकी कर, हमें खुद पर वर्क करना है, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव बांटनी है, क्योंकि हमारे अंदर जो होगा हम वही बांटेंगे। मेरे बारे में मैं बताना चाहूंगी न्यू डिवोटीज को भी, जैसे भागवत गीता की ये मेरी तीसरी रीडिंग है। इस सत्संग से जुड़ने से पहले मैं किसी भी तरह की कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं करती थी, बट इस सत्संग से जुड़ने के बाद मोना जी की गाइडेंस से मैंने मेरी डेली लाइफ में कुछ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करनी स्टार्ट की। पहले पहले मेरे दिन की जो शुरुआत होती थी वो किचन के कामों से होती थी, और जब ममता दी ने मुझे सत्संग ज्वाइन करने के लिए बोला ना, तो मैंने बोला दी मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, सारा दिन काम ही खत्म नहीं होता, बट थैंक्स टू ममता जी जिन्होंने मुझे ये सत्संग ज्वाइन करवाया और मैंने स्पिरिचुअल एक्टिविटी स्टार्ट की। अब मेरे दिन की शुरुआत स्पिरिचुअल एक्टिविटी से ही होती है, किचन के कामों की वही टाइमिंग है, बट मैं थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ ताकि मैं अपने दिन की शुरुआत स्पिरिचुअल एक्टिविटी से करूँ। और मेरी फैमिली रिलेशंस में भी काफी इंप्रूवमेंट हुई है, ईगो खत्म हो गया। ऑब्वियसली जब ईगो खत्म होता है तो रिलेशन भी बेटर होना शुरू हो जाते हैं। तो बस अभी और भी बहुत है, लेकिन टाइम कम है तो इतना ही। हरी हरी बोल,
हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। ब्यूटीफुल रिव्यू एज ऑलवेज पूजा जी, ब्यूटीफुली आपने भी पूरे टॉपिक को अच्छे से क्लेरिफाई कर दिया। तो जैसे कि मैं भी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, ये पूजा जी हमारे 2021 में संघ को 5-6 महीने हो गए होंगे, तो ये हमारे साथ जुड़ी थी, है ना। तो इनका ये क्वेश्चन रहता था कि जैसे भक्ति में हम बोलते हैं ना कि अर्चा विग्रह की पूजा करो, भोग लगाओ, तो ये कहती थी कि मेरे हस्बैंड कर लेते हैं पूजा, तो दीदी आप मुझे क्यों करनी है, तो घर में कर लो तो हो जाता है। तो मैं बोला वो तो हस्बैंड ने की ना, वो तो हस्बैंड की पूजा पहुंची ना भगवान तक, हमारी कैसे पहुंचेंगी, ऐसा थोड़ी होता है कि मेरे हस्बैंड ने खाना खा लिया तो मुझे खाना खाने की जरूरत नहीं है, मेरे हस्बैंड ने सांसें ले ली तो मुझे सांसें लेने की जरूरत नहीं है ना, मेरे हस्बैंड ने घूम लिया तो मुझे घूमने की जरूरत नहीं है ना। मैं एक अलग व्यक्तित्व हूँ ना, अलग पर्सनैलिटी हूँ, अलग कॉन्शियसनेस हूँ ना मैं, तो मेरा भगवान से कनेक्शन मुझे अलग तरह से बनाना है, मेरे हस्बैंड ने अलग तरह से बनाना, मेरे बच्चों ने अलग तरह से बनाना है ना। अगर घर में चार व्यक्ति है, घर में दस व्यक्ति, तो सबका अलग अलग कनेक्शन है भगवान के साथ, है ना। कोई किस भाव से भगवान के पास जाता है, कोई किस भाव से जाता है, तो हमें अपना कनेक्शन बनाना है। वो दिन और आज का दिन ये पूजा जी बहुत अच्छा कर रही है अपने जीवन में, मतलब हर तरह से मटेरियली भी बहुत अच्छा कर रही है अब ये, और ये डिवोशन में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है, और सत्संग में भी 98.9% इनकी अटेंडेंस रहती है। तो नेचुरली जब आप अच्छे से करोगे, अच्छे से सुनोगे चीजों को, तो वो तो भगवान ने आपको अपने दर्शन देने ही है। तो ये भगवान के दर्शन ही है ना, कि जब हम खुश हो जाते हैं, जब हमारी मटेरियली भी हम अच्छा ग्रोथ करते हैं और हम डिवोशन में भी जब हम आगे बढ़ते हैं, है ना, तो ये भगवान के साक्षात दर्शन ही है ना, और क्या है। लेकिन हमारे मन में ना हमारी चीजें पूरी हों, लेकिन भगवान नेक्स्ट लेवल पे जाके हमारी चीजें पूरी कर रहे हैं, वो अपने आप होता है, हमें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती, भगवान को खुद ही पता होता है क्या क्या करना है। पहले इस रास्ते चलने से पहले फ्रेंड्स, हमारी सारे ये नेगेटिविटी दूर होती है, हमारी मटेरियल ये चीजें पूरी होनी शुरू होती है, जहां जहां पे हमें हम फंसे पड़े हैं ना, जहां जहां हम अटके पड़े हैं, वहां पे वही चीजें पहले ठीक होनी शुरू होती है ना। बस भगवान यही कह रहे हैं कि भाई तू विश्वास रखो, चलता चल मेरे रास्ते में। थैंक यू सो मच पूजा जी, भजन की टर्न भी पूजा जी आपकी है, तो आप भजन गा सकते हो। हरी बोल,
हरी हरी बोल, जय श्री बांके बिहारी लाल की। मुझे अपनी शरण में ले लो श्याम, ले लो श्याम, मुझे अपनी शरण में ले लो श्याम, मुझे अपनी शरण में ले लो श्याम, ले ओ श्याम, मुझे अपनी शरण में ले लो श्याम। लोचन मन में जगे न हो तो, लोचन मन में जगे न हो तो, जुगल चरण में ले लो श्याम, ले लो श्याम, मुझे अपनी शरण में ले लो श्याम। जीवन देकर जाल बिछाया, रच के माया नाच नचाया, जीवन देकर जाल बिछाया, रच के माया नाच नचाया, चिंता मेरी तभी मिटेगी, चिंता मेरी तभी मिटेगी, जब चिंतन में ले लो श्याम, ले लो श्याम, मुझे अपनी शरण में ले लो श्याम। तुमने लाखों पापी तारे, मेरी बारी बाजी हारे, तुमने लाखों पापी तारे, मेरी बारी बाजी हारे, मेरे पास ना पुण्य की पूंजी, मेरे पास ना पुण्य की पूंजी, पद पूजन में ले लो श्याम, ले लो श्याम, मुझे अपनी शरण में ले लो श्याम। श्याम हे श्याम, श्याम हे श्याम, श्याम हे श्याम, श्याम हे श्याम, इस जीवन में मिलो न तुम तो, इस जीवन में मिलो न तुम तो, मुझे मरण में ले लो श्याम, ले लो श्याम, मुझे अपनी शरण में ले लो श्याम, मुझे अपनी शरण में ले लो श्याम, ले लो श्याम, मुझे अपनी शरण में ले लो श्याम। हरि
हरि, बहुत ही भाव से थैंक यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रेयर्स कर लेते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरि बोल एवरीवन, हरे हरि बोल, घर घर मंदिर हर मंदिर।